ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe meri swamini, mera de जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास राधा तू बड़ भागिनी कौन तब जय राधा माधव कुंज बिहारी
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 जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज
Yeah.
Yeah.
श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततोर्जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवती नैष्ठिकी
भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 22 से प्रारंभ करेंगे। आपकी किताब में पेज नंबर 2 निकालिए।
तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम्
तमेव वत्साश्रय वत्सलम्
मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम्
मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम्
अनन्य भावे निज धर्म भाविते
अनन्य भावे निज धर्म भाविते
मनस्य वस्थाप्य भज स्वपुरुषम्
मनस्य वस्थाप्य भज स्वपुरुषम्
नान्यं तत पद्मपलाशलोचना
नान्यं तत पद्मपलाशलोचना
दुःखचिदं ते मृगयामि कंशन
दुःखचिदं ते मृगयामि कंशन
यो मृग्यते हस्तग्रहीत पद्मया
यो मृग्यते हस्तग्रहीत पद्मया
श्रिये तरे रंग विमृग्यमाणया
श्रिये तरे विमृग्यमाणया
श्रीमैत्रेयुवाच
श्रीमैत्रेयुवाच
एवं सज्जल्पितं मातुः
एवं सज्जल्पितं मातुः
आकर्ण्यार्थागमं वच
आकर्ण्यार्थागमं वच
सन्नियम्यात्मनात्मानम्
सन्नियमात्मनात्मानम्
निश्चक्राम पितुः पुरा
निश्चक्राम पितुः पुरा
नारदस्तदुपाकर्ण्य
नारदस्तदुपाकर्ण्य
ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्
ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्
स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघन्नेन
स्पृष्टा मूर्धन्यधन्नेन
प्राणिना पाणिना प्राह विस्मित
पाणिना प्राह विस्मित
अहो तेज क्षत्रियाणा
अहो तेज क्षत्रियाणा
मान भंगम मृष्यता
मान भरामृष्यता
बालोप्ययम् हृदा दत्ते
बालोप्ययम् हृदा दत्ते
यत्समातुरसद्वच
यत्समातुरसद्वच
श्री नारद उवाच
श्री नारद उवाच
नाधुनाप्यवमानं ते
नाधुनाप्यवमानं ते
सम्मानं वापि पुत्रक
सम्मानं वापि पुत्रक
लक्षयामः कुमारस्य
लक्षयामः कुमारस्य
सक्तस्य क्रीडनादिषु
सक्तस्य क्रीडनादिषु
निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस हरे मुरारे
सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज परम पवित्र अवसर है, परम पवित्र दिन है। आज एकादशी तिथि का उत्सव है। एकादशी जिसे हमारे शास्त्र में माधव तिथि भी कहा जाता है। माधव तिथि का अर्थ होता है माधव को प्रिय करने वाली तिथि। वैसे तो बहुत सारी तिथियां आती हैं। इस संसार में कई लोग कई प्रकार का व्रत धारण करते हैं, परंतु सभी तिथियों में समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट व्रत यदि कोई है तो वो है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत का पालन करने से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और भगवान को एकादशी व्रत रहने पर प्रसन्न किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति मिल सकती है। ये भगवान का अपना कथन है। जिस दिन मूर के साथ भगवान श्री विष्णु का धमाधार युद्ध हुआ, भगवान विष्णु तो गुफा में जाकर सो गए। मूर जब भगवान श्री विष्णु को मारने के लिए आया, भगवान सोए हुए थे। उसी समय जैसे ही मूर अपनी तलवार से भगवान को मारने का प्रयास करे, उसी समय भगवान से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। उस भगवान की शक्ति ने 16 साल की कन्या के समान रूप धारण कर लिया और एक ही चंद मिनटों में वह एक शक्ति ने मूर की सारी सेना को मार डाला। मूर की सेना का वध करके वह शक्ति जब मूर नामक असुर को मारने जा रही थी, उसी समय वह मूर असुर समझ गया कि यदि मैं भगवान के चरण में नहीं जाऊंगा, यदि मैं विष्णु का शरण ग्रहण नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तुरंत मूर यहां भगवान जगे और यह मूर नाम का असुर भगवान विष्णु के शरण में चला गया। परंतु भगवान इतने क्रोधित थे, मूर को बहुत डांट कर कहा कि तूने मेरे भक्तों को परेशान किया है, संसार के साधु संतों को परेशान किया है, इसलिए यह पृथ्वी छोड़कर यहां से बाहर निकल गया। मूर ने कहा, प्रभु कहीं तो स्थान दे दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुझे रहने के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है, इस पृथ्वी को खाली करके चला जा। जब मूर ने बहुत बहुत अनुनय विनय प्रकट की, भगवान को बहुत प्रार्थना की, बहुत बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान श्री विष्णु मूर को एक स्थान देते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, तुझे रहना ही है तो आज की तिथि के दिन मैं तुझे अन्न में स्थान देता हूं। भक्तों, संजोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी और एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु ने मूर नाम के असुर को, जो शंखासुर नाम के असुर का पुत्र था, इस मूर नाम के असुर को भगवान ने एकादशी के तिथि के दिन अन्न में स्थान दिया है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है। यदि कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो उसके हृदय में मूर नाम के असुर का प्रभाव प्रकट होता है, आसुरी प्रवृत्ति प्रकट होती है। आसुरी प्रवृत्ति से बचना चाहते हो, शुद्ध सत्व में स्थित होना चाहते हो तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। मूर तो वहां से चला गया। आगे कथा बहुत सुंदर है। भगवान ने देखा कि यह अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान ने उस शक्ति को पूछा कि तुम कौन हो, तब उस शक्ति ने उत्तर दिया कि मैं एक दासी हूं, इसलिए उसका नाम ही एकादशी हो गया। और कुछ आचार्य का कहना यह है कि एकादशी तिथि के दिन उस कन्या का प्राकट्य हुआ था, इसलिए उनका नाम एकादशी रखा गया। भगवान श्री विष्णु एकादशी नाम की कन्या को कहते हैं कि देवी, तूने मेरा बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा न भूतो न भविष्यति। न तो भूतकाल में मैंने किसी को ऐसा आशीर्वाद दिया है, न तो भविष्य में मैं किसी को ऐसा आशीर्वाद दूंगा, वैसा आशीर्वाद तुझे देने जा रहा हूं। उस दिन भगवान श्री विष्णु ने मूर्तिमान एकादशी तिथि को आशीर्वाद दिया कि हे एकादशी, इस संसार में कोई भी मनुष्य तुम्हारी तिथि का पालन करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्रदान होगी। भगवान का अपना कथन है, भगवान की वाणी, वास्तव में भगवान की वाणी ही धर्म है। एकादशी के दिन यदि कोई उपवास करता है, अन्न नहीं खाता है, तो निश्चित वह व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस भक्ति को रूप गोस्वामी सुदुर्लभ कह रहे हैं, सुदुर्लभ हम भक्ति मिलना कोई आसान बात नहीं है, भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, परंतु वह सुदुर्लभ भक्ति एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाती है। तो वैसे ही एकादशी की तिथि आज है। और आज के दिन शास्त्र में ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा और भगवान का नाम लेने का व्रत किया जाता है। एकादशी के दिन उपवास होना चाहिए। भक्तों, उपवास का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है निकट, और वास का अर्थ होता है बैठना, रहना। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान और भगवान के भक्तों के निकट रहना चाहिए। भगवान के निकट रहने का अर्थ है भगवान की कथा के निकट, भगवान के नाम के निकट रहना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो अन्य दिनों से एकादशी के दिन भगवान की भक्ति करने पर उसका कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी इस भागवत सप्ताह में संजोगवश एकादशी तिथि आ गई, जिसके कारण आज के दिन यदि कोई कथा सुनेगा तो उसे सभी दिनों कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। परम पवित्र दिन है, और इस परम पवित्र दिन में हम परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हम सब भक्तों ने श्रवण किया कि किस प्रकार राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति सुरुचि के द्वारा दुर्वचन सुनकर जो रोता हुआ ध्रुव उनके पास आया, अपनी सौत के वचन को सुनकर सुनीति भी रोने लगी, और सुनीति रोते रोते ध्रुव को बहुत सुंदर उपदेश देती है। यह उपदेश शास्त्र में अमर है, बहुत सुंदर उपदेश है। वास्तव में यह सुनीति नामक स्त्री ऐसा उपदेश दे रही है, ऐसा उपदेश दे रही है जिस उपदेश से एक 5 साल का बालक भगवान की प्राप्ति कर ले। यह स्त्री शक्ति, मातृशक्ति संसार की बहुत बड़ी शक्ति है, और यदि स्त्री चाहे तो एक स्त्री पूरे संसार को बदल सकती है। एक स्त्री यदि चाहे तो पूरे संसार को मार सकती है, बिगाड़ सकती है, और एक स्त्री यदि चाहे तो पूरे संसार को बदल सकती है। संसार को बदलना स्त्री के हाथ में है, सत्य है। और संसार को बिगाड़ना भी स्त्री के हाथ में है। इसलिए भगवत गीता में प्रथम अध्याय में अर्जुन इसी के बारे में चिंतित है कि हे कृष्ण, मैं यहां पर युद्ध करूंगा और सभी योद्धाओं को मार डालूंगा, उनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी। और विधवा पत्नी जब विधवा हो जाएगी तब उसको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा, और जब स्त्रियों को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा। अधर्मो अभी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय, अधर्म प्रवेश करेगा और अधर्म सबसे पहले स्त्री के द्वारा प्रवेश करता है। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णि वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण, यदि स्त्री दुष्ट हो गई, स्त्री का चरित्र यदि गलत हो गया, तो स्त्री से जो संतान उत्पन्न होगी वह वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। और वे संतान क्या करेगी? अर्जुन बहुत चिंता में है। संकरो नरकाय एव कुल घाना कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडो दकह क्रिया। स्त्री यदि बिगड़ गई, उसके पुत्र बिगड़ेंगे, और उसके पुत्र अपने पितरों के मर जाने के बाद पिंडोदक क्रिया नहीं करेंगे, अंतिम क्रिया नहीं करेंगे, और ऐसा आचरण करेंगे कि मान लीजिए अपने स्वर्ग में गए हुए माता पिताओं को भी वह पुत्र नरक में भेज देंगे। अर्जुन स्त्रियों के लिए बहुत चिंतित है। यदि एक स्त्री भी अच्छी हो गई तो पूरे संसार को बदल सकती है, यदि एक स्त्री बिगड़ गई तो महाभारत के युद्ध में पूरे संसार को मरवा सकती है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में, क्षमा कीजिए नवम स्कंद में राजा अम्बरीश की कथा आती है। अम्बरीश राजा भगवान के परम भक्त थे, शुद्ध भक्त, जिनके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने। जिनका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ रहता था, जिनकी वाणी सदैव भगवान के गुणानुवाद करने में लगी रहती थी, जिनका हाथ एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहता था, जिनका चरण अपने मन से चलता तो भगवान के मंदिर या तीर्थ स्थान में जाकर रुकता, भगवान की भक्ति करते थे, अपने शरीर का इस्तेमाल भक्तों का दर्शन करने में, भक्तों का स्पर्श करने में करते थे, यद्यपि इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त थे। और उनकी 1000 उनकी 1 करोड़ पत्नी थी, राजा अम्बरीश की 1 करोड़ पत्नी थी। एक समय की बात, राजा अम्बरीश को एक पत्र आया। राजा ने वह पत्र पढ़ा, पत्र किसी स्त्री के द्वारा लिखा हुआ था। पत्र में लिखा था कि मैं एक स्त्री हूं, इस देश में रहती हूं, और हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। राजा ने सोचा कि पहले से मेरी 1 करोड़ पत्नियां हैं, और एक विवाह करके मुझे फजीहत में नहीं फंसना है, इसलिए राजा अम्बरीश ने पत्र भेजा कि मैं आपसे या किसी से विवाह करना नहीं चाहता हूं, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी पत्नियां हैं। तब उस स्त्री ने दूसरा पत्र भेजा कि राजन, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपके धन से प्रेम कर रही हूं, आप राजा हो इसके लिए आपके साथ विवाह करना चाहती हूं, परंतु ऐसा नहीं है, मैं आपके धन से प्रेम नहीं करती हूं, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, यदि मैं आपसे विवाह करूंगी तो मैं भी अच्छी तरह से भक्ति कर सकती हूं। राजा ने जब यह पत्र पढ़ा, राजा तो बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने सोचा क्यों नहीं इस संसार के और एक जीव का उद्धार कर दे, बिचारी को भक्ति करनी है। राजा ने अपनी तलवार भेजी, पहले के जमाने में यह चलता था, उस तलवार के साथ उस स्त्री ने यज्ञ कुंड में विवाह किया, और विवाह करके वह स्त्री राजा के पास महल में आई। राजा ने उस स्त्री के लिए बहुत सुंदर एक महल बना दिया। राजा रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगकर स्नान करके, उनके महल में बहुत सुंदर मंदिर था, सबसे पहले उस मंदिर को साफ करते, भगवान को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाते, तत्पश्चात आरती करते, दिया करते। इस प्रकार से राजा सुबह 4 बजे से जगकर अपना यह भक्ति का कार्यकलाप करते थे। यह नई पत्नी जब घर पर आई, और नई पत्नी ने देखा कि राजा 4 बजे उठते हैं, तो यह नई पत्नी सुबह 3 बजे जग गई, और 3 बजे जगकर राजा के उस मंदिर के कक्ष में आई, और जैसे राजा मंदिर को साफ करते, उन्होंने पहले से ही मंदिर को साफ कर दिया, भगवान के अर्च विग्रह को सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर आरती की, दिया इत्यादि सारा पूजा का सामान कर दिया। राजा जब आए तो देखा कि मेरे पहले कोई आकर इतना सुंदर भगवान को वस्त्र पहनाकर भगवान की पूजा करके गया है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा चलो आज तो ये सेवा हो चुकी है। दूसरे दिन राजा जगकर देखा तो दूसरे दिन भी कोई तैयारी करके चला गया। तीसरे दिन जगा तो तीसरे दिन, वैसे 15 दिन बीत गया। अब राजा के मन में हुआ कि धीरे धीरे मेरी पूजा सेवा और भक्ति छूटती जा रही है, ये नई पत्नी के कारण। इसलिए क्यों न इस नई पत्नी को एक नया मंदिर बना दिया जाए, ताकि वे अपने मंदिर में सेवा करें और मैं हमारे मंदिर में सेवा करूं। ये राजा आज के पुरुषों के जैसे नहीं थे। भगवान को भोग लगाना है तो पत्नी को कहते चलो जल्दी लगाओ, भगवान को दियाबत्ती करना है तो पत्नी को कहते थे जल्दी करो। राजा को भगवान की सेवा करने की बहुत इच्छा थी। राजा ने बहुत सुंदर, राजा का अपना जैसा मंदिर था वैसा ही मंदिर बनाया और वैसे ही अर्च विग्रह भगवान का विग्रह ला कर दिया, पूजा का सामान ला कर दिया और उस नई पत्नी को दे दिया। अब वह नई पत्नी राजा के मंदिर के बदले में वह स्वयं अपने घर पे मंदिर में सेवा करती, भगवान को वस्त्र पहनाती, राजा अपने मंदिर में सेवा करते। एक दिन राजा अपने मंदिर में सेवा करने के बाद सोचे कि चलो मैंने मेरी नई पत्नी को मंदिर लेकर दिया है तो वहां पर भगवान ने ठाकुर जी ने कैसा वस्त्र पहना होगा। इस जिज्ञासा से ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए नई पत्नी के घर पर गए। एक दिन गए, दूसरे दिन भी, अब तो रोज उनके घर पर जाने लगे भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करने की। जब राजा उस नई पत्नी के घर पर रोज दर्शन करने के लिए जाने लगे तो बाकी की 1 करोड़ पत्नी ने मीटिंग करके सोचा कि ये राजा तो 10 साल में 1 बार भी हमारे घर पर नहीं आते हैं और ये नई पत्नी के घर पर रोज जाते हैं। इस नई पत्नी के पास ऐसा क्या है जिसके कारण इसके घर पर रोज जाते हैं। तब सब पत्नियों ने अन्वेषण करके देखा, अरे बाप रे, नई पत्नी के घर पर मंदिर है इसलिए राजा उनके घर पर रोज जाते हैं। मिस्त्री को बुलाकर 1 करोड़ मंदिर बनाने का ऑर्डर दे दिया। सभी पत्नियों ने अपने अपने घर पर वैसा ही मंदिर, वैसे ही ठाकुर जी और वैसे ही पूजा, सबके घर पर पूजा होने लगी। अब तो राजा सोचने लगे कि सभी पत्नियों के घर पर जाऊंगा। कथा में आपने सुना कि राजा में भगवान की भुवन पालनी शक्ति आविष्ट होती है, वे बहुत कुछ कर सकते हैं। तब राजा केवल नई पत्नी नहीं, सभी पत्नियों के घर पर जा जाकर दर्शन करने लगे और सभी पत्नियां प्रसन्न रहने लगी। परंतु राजा जैसे ही अपनी पत्नियों के घर पर जाकर दर्शन करते रहे तो राजा का प्रजा के प्रति ध्यान कम हो गया। राजा की प्रजा ने सोचा कि ये हम पर बहुत ध्यान देते थे, अब हम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। इनके मन में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके कारण राजा हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब ये सारी प्रजाओं ने अन्वेषण किया क्या चल रहा है इनके घर पर, देखा कि सभी रानियों ने बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं। प्रजाओं ने सोचा कि हम भी हमारे घर पर मंदिर बनाए। तो उस राजा के राज्य में जितनी भी प्रजा थी सभी प्रजाओं ने वैसे ही मंदिर, वैसे ही ठाकुर जी, वैसे ही सेवा सब ने अपने घर पर पधरा दी। और राजा सोचने लगे कि अब तो गांव में सभी घर पर, मेरे राज्य में सभी के घर पर इस प्रकार मंदिर है, तो सभी के घर पर राजा जाने लगे। चाहे राजा हो, राय हो, रंक हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, राजा सबके घर पर जा जाकर दर्शन करने लगे। राजा जब अपनी प्रजा पर बहुत ध्यान देने लगे तो आजू बाजू के देश वाले जो थे वे सोचने लगे कि अब राजा हमारे साथ कारोबार क्यों नहीं कर रहा है, केवल अपनी ही प्रजा के साथ सारा कार्य करने में पड़ा है। तब आजू बाजू वाले देशों ने सोचा कि इस राजा के देश में ऐसा क्या हो रहा है। तो पता चला कि इस राजा के देश में सब लोग बहुत सुंदर सुंदर मंदिर, ठाकुर जी और उनकी पूजा चल रही है। तो राजा के आजू बाजू वाले देश वालों ने भी अपने अपने घर पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, ठाकुर जी अर्च विग्रह की पूजा प्रारंभ की। अब तो राजा अपनी प्रजा के ऊपर भी ध्यान देने लगा, दर्शन करने लगा और आजू बाजू के सभी देश में राजा जा जाकर दर्शन इत्यादि भगवान की भक्ति में मस्त हो गए। और धीरे धीरे करके पूरे भूमंडल पर, पूरी दुनिया में सबके घर पर मंदिर, सबके घर पर ठाकुर जी और सबके घर पर भगवान का नाम, हरे कृष्णा अम्बरीश राजा के राज्य में पूरी दुनिया में सब लोग भक्ति करने लगे। यदि प्रश्न पूछा जाए कि एक दिन ये सारी दुनिया भक्ति कर रही थी, इसका कारण कौन बना? सारी दुनिया भक्ति कर रही है, इसका कारण कौन बना? इसका कारण एक स्त्री, राजा की जो नई पत्नी घर पर आई थी, एक स्त्री के कारण एक स्त्री ने पूरी दुनिया को भक्त बना दिया। स्त्री यदि चाहे तो पूरी दुनिया को भक्त बना सकती है, स्त्री यदि चाहे तो पूरी दुनिया को मरवा सकती है। स्त्री के ऊपर बहुत बड़ा भार होता है। यहां पर ऐसे ही एक स्त्री की कथा है, परम आदर्श है, माता सुनीति, जो ध्रुव महाराज की माता है। सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश दे रही है, उपदेश देने वाला भी रो रहा है। शास्त्र की यह अद्भुत घटना है। हमने कथा तो बहुत सुनी है, संवाद तो बहुत सुना है, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का, सुद गोस्वामी और 88,000 ऋषि मुनियों का, कृष्ण और अर्जुन का, विदुर और मैत्रेय का, परंतु ऐसा संवाद कभी शास्त्र में नहीं सुना जो उपदेश देने वाला भी रो रहा है, उपदेश सुनने वाला भी रो रहा है। रानी सुनीति रोते हुए अपने ध्रुव को उपदेश दे रही है कि बेटा बेटा, तुम दुर्भाग्यशालिनी मां के पुत्र हो, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारी इच्छा है तुम्हारे पिता के गोद में बैठने की। यदि तुम तुम्हारे पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तपसा राज्य पुरुषम, तुम भगवान श्री विष्णु की को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो। भगवान विष्णु की भक्ति करने से यह तुच्छ तुम्हारे पिता का राज्य नहीं, भगवान विष्णु यदि प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी का पद भी दे सकते हैं। ध्रुव महाराज ने पूछा, माता जी, हे मां, इसके पहले भगवान श्री विष्णु के चरणों में जाकर कोई ऐसे पद को प्राप्त किया है? तब सुनीति कहती है, हां बेटा, ब्रह्मा जी का नाम तूने सुना होगा। ये ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु के चरणों की सेवा करके ब्रह्म लोक को प्राप्त किए, और केवल ब्रह्मा ही नहीं, तुम्हारे पिताजी के पिताजी मनु महाराज, तुम्हारे दादाजी भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति करके भौमम सुखम दिव्य मथाप वर्ग्यम, तुम्हारे दादाजी भगवान विष्णु की भक्ति करके 71 चतुर्युग तक इस पृथ्वी का सुख भोगते। 71 चतुर्युग तक सुख भोगतने का अर्थ क्या होता है? आज व्यक्ति एक क्षण के लिए भी सुख नहीं भोगत सकता है, परंतु यदि कोई भगवान श्री विष्णु की या कृष्ण की भक्ति करे तो इस जन्म में भी, इस पृथ्वी पर भी वह सुखी हो जाता है, और तत्पश्चात भविष्य में दिव्यम वे स्वर्ग लोक में जाता है, और यहां तक अपवर्ग्यम वे भगवान के धाम को प्राप्त करके नित्य सुखी बन जाता है। तो बेटा, तुम्हारे दादाजी मनु महाराज उस भगवान को प्राप्त किए हैं, दादाजी जिस मार्ग पर गए हैं उसी मार्ग पर तुम जाओ, अतः त्वम अपि तमेव भजेत आह। कुल मिलाकर निर्णय यही निकला कि बेटा, यदि तुम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो उस भगवान विष्णु की भक्ति करो। अगले श्लोक में मैत्रेय जी सुनीति के भाव में बहुत सुंदर कहते हैं, तमेव
Oh,
हे बेटा सुनीति कह रही है, हे वत्स, स्नेह से प्रेम से अपने पुत्र को संबोधन देते हुए कहती है, वत्स केवल ब्रह्मा और मनु महाराज ही नहीं, मुमुक्षु भी मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, मोक्ष चाहने वाले धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य जीवन के सभी पुरुषार्थ को चाहने वाले सभी लोग उस भगवान की शरण में जाते हैं। शिवा श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तीन प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं। एक को विषयी कहा जाता है, एक प्रकार के लोग को मुक्त कहा जाता है, और एक प्रकार के लोग को मुमुक्षु कहा जाता है। निवृत्त तरसे उपगीय मानाद भव औषधा छोत्र मनोभिना रामा। विषयी का अर्थ होता है जो इस संसार के विषयों को भोगना चाहता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों को जिसको भोगने की लालसा है, आंख के द्वारा गलत गलत दृश्य देखने की लालसा है, जिह्वा के द्वारा टेस्ट देने की लालसा है, इंद्रियों के द्वारा संग करने की लालसा है, ऐसे व्यक्ति को विषयी कहा जाता है, जो केवल नित्य निरंतर संसार के भोगों में पड़े रहते हैं। और इससे बिल्कुल विपरीत निवृत्त तरसे, इस संसार की सभी तृष्णा सभी प्यास सभी आसक्ति से सभी विषयों से जो मुक्त हो जाता है उसे मुक्त कहा जाता है। मुक्त जो सभी आसक्तियों से मुक्त है, और मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वयं मुक्त नहीं है, स्वयं आसक्ति से मुक्त नहीं है, परंतु जो मुक्त होना चाहते हैं उसे मुमुक्षु कहा जाता है। मुमुक्षु का अर्थ होता है साधक भक्त, जो साधन काल में साधना कर रहा है। तो कहते हैं मुमुक्षु भी, एक आचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं, न केवलम स कामना एव धर्म अर्थ कामना एव पूर्यति किंतु मुमुक्षुणाम मोक्षदात अपि। यदि उस भगवान श्री विष्णु की चरण में जाओगे तो वे भगवान विष्णु आपकी सारी कामना भी पूर्ण करेंगे और उसके साथ साथ मुमुक्षुओं को मुक्ति भी प्रदान करेंगे। वे भगवान भौतिक भोग भी देते हैं और मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुमुक्षु जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए उस भगवान के चरण कमलों को ढूंढते रहते हैं, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े भक्त जिस भगवान के चरणों को ढूंढते हैं, बेटा उस भगवान की चरण में चला जा। महाजनो ये न गतहस पंथा। वास्तव में महाजन, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े भक्तों ने जो कार्य किया है उसी कार्य का हमें अनुगमन करना चाहिए। माता सुनीति ये उपदेश दे रही है। माँ भारत का यह श्लोक है, प्रभुपाद जी अपने प्रत्येक भागवतम ग्रंथ के भावार्थ में भूमिका में इस श्लोक को रखे हैं। कते तर्को प्रतिष्ठो स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम। इस संसार में यदि आप तर्क करने बैठोगे तो तर्को और प्रतिष्ठ, तर्क का कोई एंड नहीं है, और स्मृतिम विभिन्ना, स्मृति शास्त्र तो बहुत बहुत है। नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम, इस संसार में इतने सारे मुनि हैं, सब के मत भिन्न भिन्न है। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सब की मति अलग अलग है। इसके पास जाओगे तो वो कुछ अलग करने के लिए कहेंगे, उसके पास जाओगे तो वो कुछ अलग करने के लिए कहेंगे। तर्क का कोई एंड नहीं है, स्मृति का कोई पढ़ नहीं सकता है, और सभी मुति मुनियों की मति अलग अलग है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास एक ही रास्ता है, महाजनो येन गतहस पंथा। क्यों? क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। इस धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है, इसको हम ठीक से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े महाजनों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो कार्य किया है उसके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए हम सबको चलना चाहिए। बड़े बड़े महाभागवत, बड़े बड़े भक्त, भागवत में जिसका नाम आया है स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलि, वैया, सकीर, वयम, इन महाभागवतों ने भगवान की प्राप्ति की है, भगवान को समझा है। तो महाजनों के बनाए हुए रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो बहुत आसानी से हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। और यदि महाजनों के बनाए हुए रास्ते से हम नहीं चलेंगे तो हम कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाजनों एन गतः सपन्था, महाजनों के पीछे पीछे चलना चाहिए। माता सुनीति कह रही हैं कि बेटा, ब्रह्मा जी ने, मनु महाराज ने जो किया है उसका अनुगमन करो। और वे लोग भी नित्य निरंतर भगवान को ढूंढते रहते हैं। मृग्य का अर्थ होता है ढूंढना, मृग्य का अर्थ होता है ढूंढना। भक्तगण भगवान को ढूंढते हैं। चक्रवर्ती पाद इस पर बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि मृग्य नतु सुलभा इति भाव। मृग्य का अर्थ है ढूंढना, और ढूंढना इससे पता चलता है कि नतु सुलभा, भगवान सुलभ नहीं है, भगवान रास्ते में खड़े नहीं है, उसे मृग्य, उसे ढूंढना पड़ता है। नतु सुलभा, भगवान को भी ढूंढना होगा। ऐसा नहीं कि भगवान सामने आकर खड़े रह जाएंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा। तो बेटा, उस भगवान की प्राप्ति करने के, उस भगवान की प्राप्ति करने पर तेरी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो मानो ध्रुव ने पूछा, मां आपने कहा कि भगवान विष्णु के शरण में जाने से मेरी सारी इच्छा पूर्ण होगी, तो बताओ भगवान विष्णु कहां मिलेंगे। ध्रुव ने निश्चय कर लिया, बस अब भगवान को प्राप्त करना है, बताओ वे कहां मिलेंगे। तब सुनीति कहती है, इतना तो नहीं जानती हूं, परंतु बेटा इतना जानती हूं कि संसार के बड़े बड़े साधु मुनि महात्मा गण उस भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाया करते हैं, जंगल में जाते हैं, भगवान जंगल में मिलते हैं। अच्छा, तो मां मैं भी जंगल में जाऊंगा। यहां पर एक प्रश्न होता है कि 5 साल का बालक जंगल में जाने के लिए तैयार है और माता सुनीति उसे जंगल में जाने के लिए भेज रही है, क्या माता सुनीति का हृदय इतना कठोर हो गया होगा जो अपने नन्हे से कोमल 5 साल के बालक को जंगल में भेज देना चाहती है। इतना कोमल बालक है कि यदि शेर घोर जंगल में, यदि छोटा सा छोटा प्राणी भी इस बालक को मारकर खा सकता है। उस समय तो जंगल में भी बहुत भयावह हुआ करते थे, आज तो जंगल बचे ही नहीं है। हमारे मुंबई में एक जंगल बचा है, नेशनल पार्क। उस समय बहुत घोर जंगल हुआ करते थे, वहां पर बहुत हिंसक पशु हुआ करते थे। तो कोई भी पशु एक झटके में ध्रुव को खा सकता था। माता सुनीति का हृदय इतना कठोर हो गया कि अपने बालक को जंगल में भेज दिया। क्या उसे थोड़ा भी विचार नहीं आया होगा। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उस समय माता सुनीति ने सोचा, तमेव वत्सा श्रय भृत्य वत्सलम। बेटा, तुम जिसके शरण में जा रहे हो वो साधारण भगवान नहीं है, उस भगवान का एक नाम भृत्य वत्सल है। भृत्य का अर्थ होता है सेवक, भक्त, और वत्सल का अर्थ होता है जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने नए ताजे बछड़े की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की उस नई ब्याई हुई गाय के बछड़े के समान रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान को भृत्य वत्सल कहा जाता है। मन में प्रश्न होता है कि सुनीति इतना कठोर हो गई। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, सुनीति ने ध्रुव को कहा कि भृत्य वत्सलम मम विद कोटि मातृ तो अपि भृत्य तत्से वत्सलम उपदेशितो दुख गंधम अपि न प्राप्तसि इति भावः। कहते हैं कि बेटा तू जिसकी शरण में जा रहा है वो भगवान मम कोटि मात्रा अपी, मेरे जैसी करोड़ों मां मिलकर भी उस एक भगवान कृष्ण के समान तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरे जैसी करोड़ों मां खड़ी हो और मात्र एक भगवान खड़े हो, ये करोड़ों मां मिलकर भी उस भगवान जैसी सेवा और भगवान जितना सुख तुझे कोई नहीं दे सकता है, इसलिए उस भृत्य वत्सल भगवान की शरण में चला जा। ये सत्य बात है, भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। और कैसे रक्षा करते हैं? जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है। तो सुनीति भगवान श्री विष्णु को भृत्य वत्सल कह रही है। भगवान जो है अपने भक्त के प्रति, भृत्य के प्रति वत्सल के समान पेश आते हैं। एक आचार्य भृत्य वत्सल का अर्थ कहते हैं, तत भजनात एव मनोरथ पूर्तिम भवती इति आशये आह भृत्य वत्सलम। भृत्य वत्सल का एक अर्थ होता है कि यदि कोई उस भगवान की भक्ति करता है तो वे भगवान उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। और भृत्य वत्सल का एक अर्थ होता है देवांतर निराशाय। भृत्य वत्सल अर्थात भगवान देवताओं जैसे नहीं है। यत किंचिन दोष दृष्टिवा विमुखो न भविष्यत। देवता लोग जो होते हैं, यदि कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है और देवताओं की उपासना में कुछ गलती हो जाती है तो देवता उसे विमुख हो जाते हैं। और उपासना देवताओं की भक्ति करने वालों को ही मारने पर तुल जाते हैं। तो भृत्य वत्सल का अर्थ होता है कि भगवान उस देवता जैसे नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु उस देवता जैसे नहीं है जो गलती हो जाने पर भक्त को ही मारने पर तुल जाते हैं। अब शास्त्र खोलकर देख लीजिए, देवताओं के जितने भक्त हुए जिससे गलती हो गई देवता उसे ही मारने के लिए तैयार। आज से 5000 वर्ष पहले गोकुल ब्रज वृंदावन में सभी गोप ग्वाल सखा ये सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र देवता की पूजा। और कई वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, परंतु भगवान के कहने पर उन ब्रजवासियों ने एक साल इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को जब पता चला कि ये लोगों ने मेरी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा की है, यद्यपि गोवर्धन साक्षात भगवान का स्वरूप है, परंतु इंद्र इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ, भागवत के दशम स्कंद में वर्णन है। इंद्र ने सोचा कि ये जितने लोग मेरी पूजा नहीं किए हैं ये सब लोग मार डालूं। सामवर्तक मेघ को आदेश दे दिया कि सारे ब्रज वृंदावन को बहा दो, मार डालो, क्योंकि वो मेरी उपासना न करके गोवर्धन की पूजा की। और इंद्र ने बहुत कोप किया, बहुत बारिश बरसाई, ओले बरसाए और ब्रजवासियों को मारने का बहुत बहुत प्रयास किया। वे तो अंत में भगवान की रक्षा से बच गए, परंतु भाव यह है कि इंद्र ने ब्रज वृंदावन में रहने वालों के ऊपर ही ये बारिश बरसाई, मथुरा में एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी। आप थोड़ा बुद्धि से विचारिए, जो लोग इतने सालों से इंद्र की पूजा करते आए थे और एक साल नहीं किए तो इंद्र उसको मारने पर तुल गया। जो इंद्र की पूजा नहीं करते थे उसे इंद्र ने कुछ नहीं किया। मथुरा के लोग इंद्र की पूजा नहीं करते तो वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। और ये लोग बेचारे हजारों वर्षों से परंपरा में इंद्र की भक्ति करते, इंद्र की उपासना, उनकी पूजा करते आते थे, एक साल भगवान के कहने पर नहीं किया तो उसे मारने पर तुल गए। ये है देवताओं का स्वभाव। आचार्य कहते हैं कि यत किंचित दोष दृष्ट्वा विमुखो भवति। ये जो देवता है, यदि थोड़ी भी गलती हो जाती है, थोड़ा भी दोष आ जाता है तो ये देवता बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और उस देवताओं की भक्ति करने वालों को ही मारने लगते हैं। परंतु भगवान जो होते हैं विमुखो न भवति। भगवान के भक्त के द्वारा एक गलती हो, दो हो या 100 गलती भी हो जाए, फिर भी भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, देखते नहीं। धावन विलीनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। भगवान की भक्ति के रास्ते में यदि कोई आंख बंद करके भी दौड़ता है, फिर भी न तो वो गिरेगा न तो उसका पतन होगा, क्योंकि भगवान जो है वे अपने भक्त के कार्य को नहीं देखते हैं, भगवान भाव को देखते हैं। और देवता और इस संसार के लोग भाव को नहीं देखते हैं, कार्य को देखते हैं। तो भगवान भाव को देखते हैं, अपने भक्त के द्वारा यदि कोई गलती भी हो गई फिर भी उसे विमुख नहीं होते हैं, उसके ऊपर कृपा ही बरसाते हैं। अब देवता जो होते हैं वे विमुख हो जाते हैं, इसलिए भगवान को भृत्य वत्सल कहा जाता है। भृत्य वत्सल भगवान, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उतना प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। गांव में रहने वाले जानते होंगे, जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है, तब यदि कोई व्यक्ति उस बछड़े की सेवा करने के लिए भी उसके पास जाता है, तब भी गाय किसी को पास में आने नहीं देती। बछड़े को जन्म देती है, उसके ऊपर कई सारा रज वीर्य लगा हुआ होता है, गाय अपनी जिह्वा से उसे साफ करती है, और सभी की दृष्टि से, सभी लोगों से गाय अपने बछड़े को बचाकर रखती है, बहुत प्रेम करती है गाय। तो यहां पर सुनीति का भाव है कि बेटा, यद्यपि मैं तेरी मां हूं, और इस संसार में किसी भी व्यक्ति को मां से ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता है। भगवान के बाद यदि किसी जीव को प्रेम करने वाला है तो वो है मां। मां के अलावा, और मां में भी जननी, जन्म देने वाली मां अपने पुत्र से जितना प्रेम करती है, पुत्र से मां से ज्यादा प्रेम और कोई नहीं कर सकता है। यदि आप भगवान का प्रेम नहीं देख सकते हो तो मां को देख लो, मां के जैसा ही भगवान का प्रेम होता है। और यहां पर सुनीति कह रही है, मेरी करोड़ों करोड़ों मां मिल जाए, फिर भी उस भगवान जैसे जैसा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं। मां का प्रेम आपने देखा होगा, बच्चे को थोड़ी भी खरोच आ जाती है, मां को रोना आ जाता है। बच्चा भूखा है तो बेचारी मां चिंतित होती है, बच्चा दुखी होता है तो मां भी रोने लगती है। मां का प्रेम अद्भुत है, और भगवान उस करोड़ों करोड़ों मां तुल्य अपने एक भक्त से प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में सत्यव्रत राजा भगवान मत्स्य देव के प्रति प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार के सभी लोग मिलकर एक जीव से प्रेम करते हैं, उससे करोड़ों गुना भगवान आप इस जीव से प्रेम करते हैं। नयत प्रसादा युत भाग लेश मन्येच देवा गुरुओ जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभुवंति पुंस तम ईश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्यते। इस संसार में जितने भी लोग हैं, पहले लिस्ट गिना रहे हैं, चाहे मां हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, समाज हो, संसार हो, देश हो, नौकर हो, ये सब मिलकर भी भगवान की सेवा और भगवान के प्रेम के 100वें हिस्से के बराबर भी ये सब लोग मिलकर भी प्रेम नहीं कर सकते। दुनिया के सब लोग मिलकर भी भगवान के युत भाग लेश एक 1 करोड़वें हिस्से के समान भी प्रेम नहीं करते हैं, उतना प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं। इसलिए भगवान को भृत्य वत्सल कहा गया है कि बेटा, वे भृत्य वत्सल हैं, वे अपने भृत्य की, अपने सेवकों की, अपने भक्त के प्रति वत्सल के समान पेश आते हैं। इसलिए यदि किसी के मन में प्रश्न हो कि एक मां अपने पुत्र को क्यों छोड़ रही है, मां अपने पुत्र को इसलिए छोड़ रही है क्योंकि वह भृत्य वत्सल भगवान की शरण में जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में नितिन प्रभु इत्यादि कुछ भक्तों ने अपने लड़कों को गुरुकुल में भेजा। कुछ लोग रो रहे थे, चिंतित हो रहे थे, हमारे बच्चे वहां जाकर क्या करेंगे, उनका कौन ध्यान रखेगा, और चिंता होती भी है। परंतु उन भक्तों के लिए यह विषय बहुत उपयुक्त है। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा है, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। हम क्या भगवान की सेवा करें? भगवान ही सबकी सेवा करते हैं। मान लीजिए हम उस बच्चे के साथ भी है, उस बच्चे को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उस टाइफाइड और मलेरिया से एक डिग्री भी हम ले सकते हैं। चाहे उस बच्चे को कैंसर हो गया हो और मर रहा हो, क्या हम उसे बचा सकते हैं? हम उसके साथ रहे या साथ नहीं भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि भगवान चाहे तो भगवान भृत्य वत्सल है, वे सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। तो बेटा उस भृत्य वत्सल भगवान की शरण में चले जाओ, वे निश्चित तुम्हें प्राप्त होगे और तुम्हें कोई कष्ट नहीं आएगा। भाविते अनन्य भावे मनस्य। और उस भगवान की भक्ति कैसे करना? शुद्ध मन से उस भगवान की भक्ति करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जंगल में जाने से व्यक्ति एकांत हो जाता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कुछ लोग एकांत प्राप्त करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, पुत्रों को छोड़ देते हैं, घर बार को छोड़ देते हैं, परंतु वह मूर्ख यह नहीं जानता है कि वह अपनी सबसे बड़ी पत्नी महारानी को साथ में लेकर जा रहा है, और वह महारानी अपना स्वयं का मन है। जब तक मन वश में नहीं है, जंगल में भी चले जाओ कोई फायदा नहीं है, और यदि मन वश में है तो संसार के बीच में रहकर भी आप भजन कर पाते हैं। उस भृत्य वत्सल भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करना, परंतु मन को एकाग्र रखना, क्योंकि जब तक मन वश में नहीं है तब तक भगवान की भक्ति करने का पूरा पूरा फल नहीं मिलता है। मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। ये मन एक ऐसी वस्तु है, ये मन ही किसी व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाती है, ये मन ही किसी व्यक्ति को नरक में पटक देती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषय मन। इसलिए भगवत गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण मन मनाभव मद भक्तो मई एवं मन आदत स्व, मन को अपने में लगाने के लिए कहते हैं। और अंत समय में भी यदि मन भगवान का स्मरण नहीं करेगा, अंत काले च मामेव स्मरण उत्वा कलेवरम, ये स्मरण मन में होता है। यदि अंत समय में मन भगवान में टिका रहा तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो अंत समय में यह मन भगवान में टिकाने के लिए अभी से ही मन को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन को वश में करो। जब भगवान ने अर्जुन को कहा तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मनी वायुर एव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कृष्ण मैं मेरे गांडीर के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं, परंतु मन को वश में करना मेरे वश की बात नहीं। अर्जुन जैसा अर्जुन जब अपने मन को वश में नहीं कर सकता है, तो हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति मन को कैसे वश में कर सकते हैं? कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न भी होता है कि मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए। यहां सुनीति भी कह रही है मन को वश में करना है। मन को वश में करने के लिए हमारे वेदों में सरल उपाय दिया गया है, मन को वश में करने के लिए मंत्र जपना चाहिए। मंत्र का अर्थ ही होता है मनः त्राईते इति मंत्र। जो मन का त्राण करे, जो मन को शुद्ध पवित्र और शांत बनाए, उसे मंत्र कहा जाता है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र जपना चाहिए। एक बार एक बहुत धनी सेठ था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, और जो जिसके पास धन ज्यादा होता है वो ज्यादा लोभी होता है। उसकी बहुत सारी फैक्ट्री थी बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, गुजरात में, और बहुत बिजी रहता था, एंगेज रहता था, थोड़ा भी समय नहीं मिलता था। सेठ सोचता था कि कोई ऐसा कारीगर मिल जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो मेरा सारा काम आसान कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए। एक दिन की बात, सेठ की इच्छा अनुसार उसे एक प्रेत मिल गया, और प्रेत ने कहा कि सेठ हुजूर आपकी जो इच्छा हो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं, आपकी सारी इच्छा मैं पूर्ण कर सकता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? आपको मुझे अपने काम में लगाए रखना है। यदि आप मुझे काम नहीं सौंपोगे, मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको ही मार डालूंगा। सेठ को लोभ हुआ, सोचा कि मेरे पास कहां काम की कमी है, मैं इसे लगा दूंगा और काम करता रहेगा फ्री में। तो ठीक है, सेठ ने कहा ठीक है। तो कहा बोलो मुझे क्या काम करना है, मुझे काम दीजिए। सेठ ने कहा दिल्ली में मेरी फैक्ट्री है, 5 साल का काम वहां पर पड़ा है, जाओ वो काम करके आओ। वे दिल्ली में गया और दिल्ली में 5 साल का काम 5 घंटे में करके आ गया। अब क्या करना है? सेठ ने कहा कलकत्ता में जाओ, 10 साल का काम पेंडिंग पड़ा है। वह प्रेत गया कलकत्ता में, 10 साल का काम 10 मिनट में करके आ गया। अब क्या करें? तब भेजा गुजरात में, वहां पर 2 साल का काम पड़ा है, 2 साल का काम 2 मिनट में करके आ गया। अब क्या करें? सेठ के पास तो काम सब खत्म होने लगा। सेठ ने कहा एक काम करो, बंबई में 2-3 साल का काम पड़ा है, आप वो करके आओ। वे प्रेत जैसे ही बंबई का काम करने गया, ये सेठ टेंशन में आ गया, अब क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा है, और यदि मैं इसे काम में नहीं लगाऊंगा तो ये मेरा ही गला दबा देगा, मुझे ही मार डालेगा, अब क्या कर। सेठ थोड़ा बुद्धिमान था, जीवन में जब तकलीफ आई तब वे गुरु के पास गया। गुरु जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बचा लीजिए, मैं मरने वाला हूं, क्या हुआ? कहा गुरु जी एक प्रेत मिला था, उसके साथ एग्रीमेंट किया, काम सौंपना है, काम नहीं सौंपूंगा तो मुझे मार डालेगा, उसने मेरा सारा काम कर दिया है, अब मैं उसे काम नहीं दूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लोभ मत करना, अब लोभ में फंस गया ना तू, अब एक काम करो, मैं जो कहता हूं वैसे करो। गुरुजी ने बहुत सुंदर प्लान दिया और प्लान लेकर सेठ अपने घर पर आया। प्रेत ने कहा बोलो क्या करना है? सेठ ने कहा मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बिठाकर सेठ अपने बहुत बड़े खेत में लेकर गए। खेत के बीचों बीच जाकर उस प्रेत को कहा कि इस खेत के बीचों बीच 100 मीटर का खड्डा करो। प्रेत ने 10 मिनट में 100 मीटर का खड्डा कर दिया और इस कुएं में कुएं के बीचों बीच एक बंबू गाड़ो। प्रेत ने बंबू गाड़ा, फिर सेठ ने कहा कि इस बंबू के ऊपर चढ़ जाओ। प्रेत चढ़ गया बंबू के ऊपर। सेठ ने कहा आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब तक मैं ना कहूं तब तक घूमते रहो। अब प्रेत तो बेचारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सेठ ने ना कहा नहीं, प्रेत वहां से निकला नहीं। आचार्य गण कहते हैं कि वास्तव में ये सेठ और कोई नहीं, ये सेठ हम ही है, और ये प्रेत और कोई नहीं, ये प्रेत हमारा अपना मन है। कहते हैं खाली मन शैतान का घर, यदि इस मन रूपी प्रेत को एंगेज नहीं रखेंगे, काम में नहीं लगाएंगे तो ये मन हमें ही खा जाएगा, इसलिए इस मन को कार्य में लगाना चाहिए। और कैसे कार्य में लगाना चाहिए? इस मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे उस प्रेत को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसे ही इस मन को हमारे माला के मोती के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
मंत्र जपने से यह मन वश में हो जाता है। तो सुनीति कह रही है कि हे ध्रुव बेटा, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षु भीर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम। बड़े बड़े मुनि जिस भगवान का चरण कमल ढूंढते रहते हैं, उस भृत्य वत्सल भगवान की अनन्य भाव से, शुद्ध मन से उस परम पुरुष भगवान को भजस्व, उनका भजन करो। और उस भगवान के अलावा तुम्हारा पुरुषार्थ कोई पूर्ण नहीं कर सकता है, उस भगवान के अलावा तुम्हारी इच्छा कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए अगले श्लोक में सुनीति कहती है नान्यत हे ध्रुव, हे अंग, सुनीति अपने पुत्र को अंग कह रही है। हे बेटा, तू मेरा अंग है, तू मेरे शरीर से जन्म लिया है, इसलिए मुझ पर विश्वास कर। विश्वासनार्थम एव, मुझ पर विश्वास रख कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए साक्षात लक्ष्मी भी घूमती रहती है, और उस भगवान का एक नाम पद्म पलाश लोचनाद। उस भगवान के लोचन कैसे हैं? पद्म पलाश। वे भगवान कमल नयन, कमल के समान आंखें वाले हैं। तस्य दृष्टि पातेन एव तप्तस्त्वं शीतली भविष्यति। उस भगवान की बात छोड़ दो, उस भगवान की किसी के ऊपर दृष्टि भी हो गई, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तस्य शीतली भविष्यति, वह सुख और आनंदमय हो जाता है। भगवान की दृष्टि में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि हो गई वह सुखमय और आनंदमय हो जाता है। मरा हुआ भी जीवित हो जाता है, बूढ़ा भी जवान हो जाता है। भागवत में यह कथा आई है, बूढ़े व्यक्ति के ऊपर भगवान की आंख पड़ गई तो वह जवान हो जाते हैं और मरे हुए भी जीवित हो जाते हैं। भागवत के अष्टम स्कंद में कथा है, जब देव और दानव समुद्र मंथन करना चाहते थे तो ये देव और दानव समुद्र मंथन करने के लिए बहुत बड़ी मंथनी ढूंढ रहे थे, तो मंथनी के रूप में मंदार पर्वत को चुना। तो मंदार पर्वत को उस मंदार पर्वत के स्थान से समुद्र की ओर लेकर आ रहे थे। सारे देव और दानव अपने कंधे के बल से, अपने हाथ के बल से उस मंदार पर्वत को उठा तो लिए, और सब लोग अपनी सारी ताकत लगाकर उस मंदार पर्वत को लेकर चलने लगे। चलते चलते धीरे 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 चले, आधा एक घंटा चले, तब तक तो सब लोग थक गए। परंतु देवता लोग यदि कह दे कि हम लोग थक गए हैं तो असुरों के सामने उसका नाम बिगड़ जाएगा, अपनी वैल्यू डाउन हो जाएगी। असुर भी थक गए थे, असुर यदि कह दे कि भाई हम लोग थक गए, थोड़ी देर नीचे रखते हैं, तो देवता लोग कल सुबह पेपर में आ जाएगा कि असुर थक जाते हैं, देवता नहीं थकते। दोनों को एक दूसरे की प्रेस्टीज की चिंता थी, वैल्यू डाउन होने की चिंता थी। सब लोग उठाए रखे, चलते रहे, कोई किसी को कह नहीं पाया कि मैं थक गया हूं। धीरे 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 चलते गए, परंतु कब तक उठाकर रख सके। एक क्षण ऐसा आया कि सब लोग की शक्ति क्षीण हो गई, सब लोग के हाथ में वो मंदार पर्वत टिका नहीं, और धड़ाम करके वो मंदार पर्वत गिरा। जैसे वो मंदार पर्वत गिरा, किसी का हाथ के ऊपर, किसी के पांव के ऊपर, और कुछ लोग जो बहुत बड़े देशभक्त थे वो पर्वत के नीचे चल रहे थे, वे तो बिल्कुल चूर चूर हो गए, चूरणिया मास। वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वे चूर्ण हो गए। जैसे आटा होता है, आटा को चक्की में, चक्की से जब आटा आता है तो बिल्कुल चूर्ण हो जाता है, वैसे ये सभी देव और दानव चूर्ण हो गए। और कुछ लोग इंजर्ड हो गए, किसी को फ्रैक्चर हुआ, किसी का हाथ कटा, किसी का पांव कटा, और सब लोग वहां पर रोने लगे। परंतु भगवान की इच्छा थी कि समुद्र मंथन हो। भागवत में वर्णन अष्टम स्कंद के छठे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होकर आए। कुछ लोग मरे हुए थे, कुछ का हाथ, कुछ का पांव टूटा हुआ था, परंतु वह सभी लोगों के ऊपर गरुड़ ध्वज, वहां पर नाम आया है हमारे प्रभु जी का, भगवान गरुड़ ध्वज, गरुड़ के ऊपर सवार भगवान विष्णु ने उस समय वह देव और दानवों के ऊपर केवल अपनी दृष्टि की, अपनी दृष्टि करने मात्र से सभी देवता और दानव वैसे जीवित हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे नींद से कोई उठ जाता है और उठकर चलने लगता है, वैसे मरे हुए देवता और दानव भी जीवित होकर चलने लगे। केवल भगवान की दृष्टि से, पद्म पलाश लोचना, सुनीति कह रही है भगवान के लोचन पद्म पलाश कमल की तरह शीतलता देने वाले, मरे हुए को भी जीवित करने वाले। कालिया दमन लीला में भी आप सब लोग जानते होंगे, ऐसे 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण गाय बछड़े चराने के लिए यमुना के किनारे गए। बहुत प्यास लगी तो गैया ने पानी पिया, बछड़ों ने पानी पिया, कृष्ण के सखाओं ने भी पानी पिया, परंतु वहां पर कालिय नाग रह रहा था, इसलिए वो पानी इतना जहरीला हो गया था कि सब लोग मर गए। और कालिय का दमन करके जब भगवान श्री कृष्ण बाहर आए, वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण बाहर आकर जब अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उस गोप ग्वाल सखा और गाय और बछड़ों के ऊपर अपनी दृष्टि किए, सब लोग जीवित हो गए। भगवान की दृष्टि करने मात्र से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाए, तो दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है तो भगवान की दृष्टि से सुख प्राप्त हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तैसे पद्म पलाश लोचनाद न अन्य मृग्यामी कंचन। बेटा, ऐसे प्रभावशाली भगवान कृष्ण और विष्णु के अलावा न अन्य मृग्यामी मैं किसी और किसी को नहीं देख रही हूं। तेरा भला करने वाला एकमात्र कृष्ण ही है, और न तो कोई देवी है, न तो कोई देवता है, न तो इस संसार का कोई राजा मनुष्य कोई तेरा भला नहीं कर सकता है एकमात्र कृष्ण के अलावा। वंशीधर जी कहते हैं, देवतान अनंतरस्य नश्वर फल दायित्वात्। मान लीजिए देवता किसी को कुछ दे भी देते हैं, परंतु देवताओं के द्वारा जो मिलता है वो फल नश्वर होता है, शाश्वत नहीं होता है। शिव जी ने रावण को लंका दी, कितने साल तक लंका में रह पाया? ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया, कितने साल तक टिका? देवताओं के द्वारा जो मिलता है बहुत क्षणिक होता है, नश्वर होता है, परंतु भगवान के द्वारा जो मिलता है वह शाश्वत काल तक रहता है। ध्रुव महाराज को आगे चलकर भगवान एक लोक देंगे जिसे ध्रुव लोक कहा जाता है। भक्तों, शाश्वत काल अर्थात आज भी वह ध्रुव तारा प्रमाण है, आकाश में जाकर टेरेस में जाकर देख सकते हो, आज भी वह ध्रुव तारा है। भगवान जिसको देते हैं वह शाश्वत काल तक रहता है और अनंत अनंत काल तक रहेंगे, परंतु देवता जो देते हैं वो नाशवंत होता है। बेटा, शाश्वत काल तक सुख देने वाले एकमात्र पद्म पलाश लोचनाथ कमल नयन भगवान विष्णु हैं, उसके अलावा न मृग्यामी कंचन में और किसी को नहीं देख रहे हैं। यह मृग्य ते हस्त ग्रहित पद्मया, हे ध्रुव मैं तुझे क्या कहूं? जो संसार, यह समग्र संसार जिस लक्ष्मी के पीछे घूम रहा है, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता। सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, सब लोग धन, लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं, सुंदरता, ऐश्वर्य, सुख, सब लोग यह चाहते हैं। सुनीति कहती है, समग्र संसार जिस लक्ष्मी को चाहता है, जिस लक्ष्मी को पूजता है, वह लक्ष्मी पद्म पलाश हाथ में, पद्मया श्रिया हाथ में कमल लेकर उस भगवान को ढूंढती फिरती है, कहां विष्णु मिलेंगे, कहां विष्णु मिलेंगे। समग्र संसार जिस लक्ष्मी के पीछे पड़ा है, वह लक्ष्मी जिस विष्णु को ढूंढ रही है, उस विष्णु के चरण में जा, वे तेरा कल्याण करें। संसार के लोग क्या तेरा कल्याण कर पाए, ये सत्य बात है। लक्ष्मी जी आज भी भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वृंदावन में 12 वन है, उस 12 वन में से एक वन है जिसका नाम है बेल वन। लक्ष्मी जी नित्य निरंतर भगवान विष्णु की सेवा करती हैं, परंतु जो आनंद भगवान श्री कृष्ण में है, जो आनंद पूर्ण पुरुषोत्तम बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में है, वह आनंद विष्णु में भी नहीं है। यद्यपि विष्णु भगवान के ही स्वरूप है, विष्णु के पास सब कुछ है, परंतु बंसरी नहीं है। लक्ष्मी जी मोहित हो गई भगवान श्री कृष्ण को देखकर, और वे अपना स्थान छोड़कर ब्रज वृंदावन गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आई। जब वृंदावन में लक्ष्मी जी आई, ढूंढ रही थी कृष्ण कहां मिलेंगे, कृष्ण कहां मिलेंगे, तब गोपियों को मिली और गोपियों को मिलकर कहा, पूछा कि कृष्ण कहां मिलेंगे। गोपियों ने कहा, देखो कृष्ण को मिलने के पहले तुम्हें राधा से मिलना पड़ेगा, बिना राधा के तुम कृष्ण को नहीं मिल सकते। तब लक्ष्मी जी, अब जिसके पास लक्ष्मी जी की थोड़ी कृपा हो जाती है, जिसके पॉकेट में थोड़ा सा धन, थोड़ी सी लक्ष्मी आ जाती है, वे जमीन से एक फुट ऊपर चलने लगता है, अहंकारी बन जाता है। साक्षात लक्ष्मी को क्यों अहंकार नहीं होगा? लक्ष्मी जी ने अहंकार से कहा, मैं क्यों किसी राधा वादा से मिलूं, मैं डायरेक्ट कृष्ण से मिलूंगी। ब्रज वृंदावन के लोगों ने कहा, बिना राधा के कृष्ण को नहीं मिल सकते, बिना राधा की कृपा के कृष्ण श्याम नहीं मिल सकते। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं डायरेक्ट कृष्ण से मिलूंगी, मैं डायरेक्ट कृष्ण के पास जाऊंगी। और कृष्ण से मिलने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या करने लगी, बेल वन में जाकर तपस्या करने लगी। आचार्यों का कहना है कि आज तक, वर्तमान में, आज के दिन तक, आज भी लक्ष्मी जी वहां पर खड़ी है, तपस्या कर रही है, परंतु फिर भी उसे कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। ढूंढती रहती है हाथ में कमल लेकर, कृष्ण कहां मिलेंगे, कहां। श्रीपाद सिद्ध स्वामी तो बहुत सुंदर कहते हैं, हस्तेन ग्रहितम दीपवत पद्म यया तया श्रिया इतरे ब्रह्मा इत्यादि। कहते हैं यहां पर जो हाथ में कमल लेकर घूम रही है, वह कमल नहीं, हाथ में दिया लेकर घूम रही है और दिए के प्रकाश में ढूंढ रही है, कहां हमारे विष्णु, कहां कृष्ण मिलेंगे, कहां कृष्ण मिलेंगे। और केवल लक्ष्मी नहीं, ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवता भगवान जिस भगवान को ढूंढते हैं, जिस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उस भगवान के शरण में जा, उस भगवान के अलावा तेरी इच्छा पूर्ण करने वाला न मृग्यामी, अन्य किसी को नहीं देख रहे हैं। सुनीति का अंतिम वाक्य अपने पुत्र को कह रही है कि उस भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के अलावा तेरा कल्याण और कोई नहीं कर सकता। इतना कह के ध्रुव खड़ा हुआ और खड़े होकर ध्रुव ने कहा कि मां, तो मैं जाऊं, मुझे अभी भगवान को प्राप्त करना है और मैं अभी जाना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा तुझे वन में जाने के लिए अभी जो अवसर है, इससे बड़ा अवसर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। देखिए, एक मां अपने पुत्र को वन में भेज रही है भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। भेज दिया सुनीति ने, और ध्रुव भी हमारी तरह बोरिया बिस्तर बांधने के लिए नहीं रहे घर पर, वही जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहनकर ध्रुव महाराज वन में जाने के लिए निकल पड़े। और यहां पर मां प्रेम से अंदर हृदय रो रहा है, एक ओर भगवान के ऊपर विश्वास है और एक ओर पुत्र का प्रेम भी है। ऐसा नहीं है कि पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है, परंतु जानती है, ज्ञान है सुनीति को कि संसार में सबसे बड़ा कार्य भगवान की भक्ति करना है। देखिए, एक मां आदर्श स्थापित कर रही है कि अपने पुत्र को भगवान की प्राप्ति करने के लिए चाहे वन में भेजना पड़े तो भेज देना चाहिए। परंतु धिक्कार है आज की माओं को, जिसके पुत्र भक्ति करना चाहते हैं, बेचारे मंदिर में, वन की बात तो दूर रही, मंदिर में जाना चाहते हैं, परंतु कुछ माँ अपने पुत्र को मंदिर भी नहीं भेजती। माता पिता कहते हैं, अब थोड़ी ना भक्ति करने की थोड़ी ना उम्र हो गई है, बूढ़े होकर भक्ति करना। परंतु सुनीति जैसी माँ सिखाती है कि किस प्रकार अपने पुत्र से भक्ति करानी चाहिए। केवल सुनीति नहीं, शास्त्र में ऐसी अनेकों माँ हो गई जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाई। आइए, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जब वन में जा रहे थे, सीता जी को पता चला कि पतिदेव वन में जा रहे हैं। सीता मैया आई और वे भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हुई, परंतु रामायण में वर्णन है कि उस समय लक्ष्मण जी भी आए, क्रोधित होकर आए, बहुत क्रोधित हो गए और कहे कि भैया, तुम्हें वन में कौन भेज रहा है? यदि पिताजी ने तुम्हें वन दिया है तो आज मैं पिता को मार डालूंगा। भाई के प्रति इतना प्रेम था। भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को बहुत समझाया। समझाने के बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई, ठीक है, आप 14 साल के लिए वन में जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, यहां पर माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है, पिताजी बहुत दुखी हैं, बहुत बड़े धर्म संकट में फंसे हैं, उनकी सेवा करना, उनको धैर्य देना, आश्वासन देना, ये तुम्हारा धर्म है, इसलिए आप घर पर रहो। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। लक्ष्मण ने जब बहुत जीत पकड़ी, तब अंत में भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, लखन, यदि साथ में चलना है तो अपनी माँ सुमित्रा से आदेश लेकर आओ, क्योंकि जब तक तुम्हारी माँ आदेश नहीं देती है तब तक मैं तुम्हें वन में नहीं लेकर जाऊंगा। रामायण में वर्णन है, लक्ष्मण जी जब सुमित्रा अपनी माँ के पास जा रहे थे तो एक एक कदम एक एक कल्प के समान लग रहे थे। मन में यही सोच रहे थे कि यदि माँ ने ना कह दिया तो मैं क्या करूंगा, बिना राम के मैं मर जाऊंगा। बहुत सकुचाते हुए, मन में चिंतित होते हुए माँ सुमित्रा के पास जा रहे थे। जब वे सुमित्रा माँ के पास पहुंचे और पहुंचकर कहा कि मैया, मेरा भाई, बड़ा भाई राम 14 साल के लिए वन में जा रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं भी उनकी सेवा करने के लिए 14 साल के लिए वन में जाऊं, तो मां मैं आपसे यह परमिशन लेने आया हूं, मैं आपसे आदेश लेने आया हूं, क्या मैं भी वन में जाऊं। तब सुमित्रा डांटते हुए कहती है कि लखन, परम ब्रह्म परम परमेश्वर ईश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए जाना है और मुझे पूछने के लिए आ गया, मुझे पूछने की आवश्यकता है बेटा, मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि राम वन में जा रहे हैं तो तुझे भी वन में जाना ही चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। बेटा आज मैं धन्य हो गई, क्यों, क्योंकि तुम राम की सेवा करने के लिए जा रहे हो। इस संसार की नारियों को कहती हैं कि वही इस संसार में वही माँ माँ है जिसका पुत्र राम और कृष्ण का भजन करता है। कहती है, बेटा आज मैं पुत्र वाली हुई, आज तक मैं पुत्र वाली नहीं थी, परंतु आज तू राम की सेवा करने के लिए जा रहा है, इसलिए आज मैं पूरे जगत को ऐलान कर सकती हूँ कि मेरा भी एक पुत्र है जो राम का भक्त है। आज मैं पुत्र वाली हुई और आज मैं धन्य हो गई, बेटा तुम जाओ और प्रेम से, हृदय से और उत्साह के साथ अपने भाई की सेवा करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमित्रा जी आदेश देती हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जातु सितु
जग सोई रघुपति भगत दास।
इस संसार में वही माँ माँ है, वही माँ पुत्रवती है जो रघुपति राम, जिसका पुत्र रघुपति राम का भजन करता है, और जिसका पुत्र राम का भजन नहीं करता है वह माँ माँ नहीं है, उससे तो अच्छा है वे किसी पत्थर को पाले।
न तरु मांज बलि बादी बियानी राम विमुख सुख देही जानी, न तरु मांज बलि बादी बियानी राम विमुख सुख देही जानी।
उसे तो चाहे मांज ही रह जाए, जिसका पुत्र राम और कृष्ण का भक्त न हो उससे चाहे वे बिना पुत्र वाली ही रहे। और लखन तू क्या सोच रहा है कि राम तो कैकेयी ने वनवास दिया है, राम अपना कर्म का फल भुगत रहा है, नहीं, वास्तव में राम साक्षात भगवान है, उसे कोई वन में भेज नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसके कर्म को नहीं बदल सकती है। वास्तव में राम इसलिए वन में जा रहे हैं क्योंकि वे तुम पर कृपा करना चाहते हैं।
तुमरे ही माग राम वन जाई दूसर हेत दात कछु नाही, तुमरे ही माग राम वन जाई दूसर हेत दात कछु।
बेटा आज भाग्य के दरवाजे खुल गए, क्योंकि राम की सेवा के लिए जा रहे हैं। वास्तव में राम की सेवा उसी को मिलती है जो अनंत अनंत जन्मों से सुकृति करता है, पुण्य करता है। अनंत अनंत जन्मों की सुकृति और पुण्य का उदय होता है तब राम और सीता जैसी जगत जननी माता की सेवा प्राप्त होती है।
सकल सुप्री कर बन भोले राम सिया पद सहज सने
सकल सकृत कर बनाई राम सिया पद सहज सने।
बेटा आज से मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सुमित्रा को भूल जा। आज से जनक वैदेही, आज से सीता ही तुम्हारी माँ है और राम ही तुम्हारे पिता है। ये सच्य बात है। इस संसार की माँ और बाप कितने साल तक पुत्र के साथ रहेंगे? वास्तव में हमारे वास्तविक पिता भगवान श्री कृष्ण है, राम है।
तात तुम्हारी मातु बेदेही पिता राम सब भांति
ध्यान से सुन। अब अवध में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर तेरा बड़ा भाई राम रहता है वहीं पर अवध है। क्यों? क्योंकि वहीं पर प्रकाश होता है जहां पर सूर्य होता है। दिन वहीं पर होता है जहां सूर्य होता है। वैसे ही जहां पर राम है वहीं पर अवध है।
अवध वासु ताहि दिवस जह भानु दासु
अवधतः जह राम निवासु ताहि दिवस जह भानु दासु।
संसार की आदर्श माँ सुनी सुमित्रा अपने पुत्र लखन को शिक्षा दे रही है, बेटा भगवान की सेवा करो और इस प्रकार के सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि एक पल के लिए भी राम को अयोध्या की याद ना आए। अपने नींद को वश में करना, अपने भोजन को वश में करना और नित्य निरंतर राम की सेवा करते रहना। कभी भी जीवन में ईर्ष्या मत लाना, क्रोध मत करना। सभी जीवों से प्रेम करते हुए तुम्हारे बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा करते रहना। यही इस माँ का उपदेश है।
पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जातु सितु होई
पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जातु
प्रकार इतिहास साक्षी है कि जो योग्य माँ है, जो वास्तविक माँ है, वे अपने पुत्र को भजन में लगाती है। और अपने पुत्र को जब एक माँ इस प्रकार से संस्कार देती है तब जाकर उनके पुत्र महान बनते हैं, जैसे ध्रुव लक्ष्मण। और ये तो सब दूर की बात है। कल का इतिहास महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रतापी वीर हो गया जिसका नाम शिवाजी था। शिवाजी इतने बड़े पराक्रमी थे, इतने बड़े पराक्रमी थे, बहुत छोटी सी उम्र में, कम वयस में उन्होंने औरंगजेब इत्यादि का वध किया, बहुत कम वयस में। कहा जाता है कि शिवाजी के ऊपर माँ भवानी इतनी प्रसन्न हुई साक्षात भवानी माँ ने प्रसन्न होकर शिवाजी को तलवार प्रदान की थी, बेटा इससे युद्ध करना। और उस देवी के द्वारा दी गई तलवार से शिवाजी युद्ध करते थे। और आज भी दिन के दिन वर्षों के वर्ष बीत गए परंतु आज भी शिवाजी अमर है। यह सब कैसे बना? क्योंकि बचपन में जब कोई माँ अपने पुत्र को संस्कार देती है तब जाकर उनके पुत्र पराक्रमी वीर भक्त बनते हैं। इसलिए शास्त्र के द्वारा एक माँ को उपदेश दिया जाता है कि अपने पुत्र को भक्त बनाना चाहिए। इसलिए हमारे गुजरात में कहावत है,
जननी जन तो भक्त जन, क्या दाता क्या सू, नहीं तो रह जे मांजनी, मत घुमा विष्णु।
शास्त्र कहता है कि जननी यदि पैदा करना है तो भक्त पैदा कर, नहीं तो कोई दाता प्रकट कर, नहीं तो कोई वीर प्रकट कर। और यदि भक्त पैदा नहीं कर सकती है तो फिर किसी पुत्र को जन्म देने का कोई योग्यता ही नहीं। इसलिए वास्तव में सुनीति एक मां का पात्र भज रही है और अपने पुत्र को वन में भेज रही है। विदुर जी मानो प्रश्न पूछे मैत्री जी से, एवं मातृ उपदेशम श्रुत्वा ध्रुवम किम चकार। माता ने ध्रुव को उपदेश तो दे दिया परंतु उपदेश देने के बाद ध्रुव ने क्या किया, किम चकार। तब मैत्री मुनि कहते हैं,
एवं संजल्पितम मातु आकरण्यार्थागम वच सन्नियम्यात्मनात्मानम् निश्चक्राम पितु पुरा।
मैत्रे वाच मैत्रे मुनि कहने लगे, एवं संजल्पित मातु, इस प्रकार एवं जो आगे कहा गया, इस प्रकार अपने माता के द्वारा संजल्पितम बहुत सुंदर उपदेश सुनने के बाद, संजल्पितम का अर्थ शिपा छिद्र स्वामी कहते हैं, संजल्पितम विलापम रोदन पूर्वकम। इस प्रकार रोदन पूर्वकम रोते हुए अपनी माता से उपदेश सुना। वो उपदेश कैसा था? कहते हैं अर्थ आगमम वच, अर्थागमम वच, सुनीति के द्वारा जो उपदेश दिया गया वे अर्थागमम वचन कहा जाता है। अर्थागमम का अर्थ होता है अर्थस्य पुरुषार्थस्य, ऐसे वचन, ऐसा उपदेश जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अर्थागमम वचन का दूसरा अर्थ होता है अर्थस्य भजनीयस्य, ऐसा उपदेश जिससे व्यक्ति भजन भक्ति में लग जाए। सुनीति ने कैसा उपदेश दिया? अपने पुत्र को भक्त बनाने के लिए उपदेश दिया। एक मां के द्वारा अपने पुत्र को भक्त बनाने का उपदेश देना यही वास्तविक मां का कर्तव्य है। और वास्तव में वही मां है। भागवत के पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् देवम न सस्यात् न मोचयेतम समुपेत मृत्यु। वह पिता पिता नहीं है, वह मां मां नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने पुत्र को भक्त न बना सके। वास्तव में पिता की सार्थकता उसमें ही है जो अपने पुत्र को भक्त बनाए। प्रभुपाद जी भक्तिशान महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कई बार बोले हैं, लिखे हैं, कहे हैं कि यदि किसी पुरुष और स्त्री में अपने पुत्र को भक्त बनाने की शक्ति है तब ही वे पुत्र को पैदा कर, यदि कोई अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकता है तो उसे एक पुत्र भी पैदा नहीं करना चाहिए। ठाकुर भक्ति में तो यहाँ तक कहते हैं, यदि आप अपने पुत्र को भक्त बना सकते हो तो 100 पुत्र पैदा करो, इसमें शास्त्र कोई इनकार नहीं करता है। परंतु पुत्र को इस प्रकार से भक्ति में लगाना चाहिए। और यदि कोई माँ और पिता अपने पुत्र को भक्ति में नहीं लगा सकता है तो फिर वो माँ माँ नहीं है। प्रहलाद महाराज ने कभी भी अपने पिता को पिता नहीं कहा, भागवत सप्तम स्कंद प्रमाण है। क्यों? क्योंकि उनका पिता पिता था ही नहीं, भक्ति का उपदेश दे ही नहीं रहा था। खैर, संसार के माता पिताओं को चाहिए कि अपने पुत्रों को भक्ति में लगाए। आज तो यहां तक कहना पड़ेगा कि अपने पुत्र को भक्ति में लगाओ या न लगाओ, जिसके पुत्र भक्ति में लगे हैं कम से कम उसे भक्ति करने दो, यही सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। कुछ लोग तो करने ही नहीं देते हैं, जाने ही नहीं देते हैं मंदिर। परंतु माता के वचन बहुत सुंदर थे, अर्थागमम वचन, सुनीति के वचन अर्थागमम थे, भक्ति पूर्वक वचन थे, और ऐसा वचन जिससे ध्रुव की सारी सिद्धि सारी इच्छा पूर्ण हो जाए। और मां का ऐसा वचन था, ऐसा वचन था कि निश्चक्राम पितु पुरात। मां के वचन को छोड़कर सुनकर ध्रुव महाराज तुरंत अपने पितु के पुर अपने पिता के राज्य को छोड़ दिया। उपदेश देना है तो ऐसा होना चाहिए, छोड़ दिया। पितु पुरात निश्चक्राम भगवत आराधने तत्र। अब एक प्रश्न होता है कि ध्रुव महाराज ने घर को क्यों छोड़ दिया और घर छोड़कर जंगल में क्यों गए? अपने घर को छोड़कर किसी राज्य में किसी कोने में जाकर किसी चौराहे में जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर कहीं भी भक्ति कर सकते थे। ध्रुव महाराज ने घर को राज्य को क्यों छोड़ा? तब एक आचार्य अपना मंतव्य देते हैं, पितु पुरात निश्चक्राम भगवत आराधने तत्र विक्षेतम आलक्ष्य। ध्रुव महाराज ने देखा कि जब तक पितु पुरात अपने पिता के राज्य में रहूंगा, जब तक मैं घर पर रहूंगा, तब तक भक्ति में कुछ ना कुछ बाधा बनती रहेगी, और भक्ति में बाधा बनी रहेगी तो भगवान जल्दी मिलेंगे नहीं, और भगवान को जल्दी प्रकट करना है, देरी नहीं करनी। तो भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को पाने के लिए घर से बाहर निकलना ही होगा। प्रहलाद महाराज भी यही उपदेश देते हैं, तत्साधु मनिये असुर वर्य देही नाम सदा समुद्विघ्न धियाम असद ग्रहात इतवात्म पातम गृह अंध कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। इस संसार के गृहस्थियों के झमेले में पड़े रहने वाले दुखी व्यक्ति को चाहिए कि अपने इस गृहस्थी के झमेले को छोड़कर वनम गतो यत वन में जाकर भगवान हरि की भक्ति कर। क्यों घर पर भगवान नहीं मिल सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं मन चंगा तो कथोटी में गंगा, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, जंगल में जाने की क्या जरूरत है, मन चंगा तो कथोटी में गंगा। कई लोग ऐसा करके रविवार को घर पर ही बैठे रहते हैं, कभी मंदिरों में नहीं जाते। परंतु ऐसा नहीं है। एक राजा ने भी ऐसा सोचा था, मन चंगा तो कथोटी में गंगा। एक राजा की इच्छा हुई कि मैं भगवान की प्राप्ति करूं, मन में इच्छा हुई, और किसी को पूछा भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना होगा? कहा कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल में जाना होगा। शाम को इच्छा हुई, सुबह उठकर मन बदल गया। राजा ने सोचा कि यदि मन शुद्ध है, मन चंगा कथोटी में गंगा, भगवान घर पर ही मिल जाएंगे, जंगल में जाने का प्रोग्राम बंद रखा। अब क्या करें? उतने में बाजू के गांव में एक भक्त रह रहे थे। उस भक्त को यह बात पता चली कि राजा भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे, वे जंगल में जाने वाले थे, परंतु उन्होंने वह प्लान बंद रखा, वे नहीं गए। तब वह भक्त एक मुठहारे का रूप लेकर राजा के राज्य में आया। मुठहारा जानते होंगे आप, मुठहारा का अर्थ होता है ऊंट को बेचने वाला। ऊंट को बेचने वाले का रूप धारण किया, राजा के राज्य में आया, और राजा के राज्य में सभी के घर पे जा जाकर दरवाजे ठोक ठोक कर कहता था कि मेरा एक ऊंट खो गया है, क्या आपने मेरे ऊंट को देखा? सभी के महल में, सभी के बंगले में और सभी के छोटी छोटी कुटियाओं में जाकर भी पूछने लगा। अब सारे राज्य में सब लोग परेशान हो गए कि भाई आपका इतना बड़ा ऊंट हमारे छोटे से घर में थोड़ी ना आ सकता है। आप जरा देखो तो सही, हमारे घर का दरवाजा ही इतना छोटा है जिसमें मनुष्य भी ठीक से नहीं आ सकता है, आपका ऊंट कैसे आएगा। लेकिन फिर भी वे सभी के घर पर जा जाकर पूछने लगा, मेरे ऊंट को देखा, मेरे ऊंट को देखा। राज्य में सभी लोगों के नाक में दम हो गया, सब लोग राजा के पास गए। राजा के पास जाकर कंप्लेंट किया कि ये हमारे गांव में एक व्यक्ति आया है, बहुत परेशान करके रख दिया। राजा ने बुलाया राजसभा में, पूछा क्यों सबको परेशान कर रहे हो। ऊंट हारे ने कहा मैं क्या करूं, मेरा ऊंट खो गया है तो मैं ढूंढ रहा हूं, किसी के घर पर तो नहीं चला गया। राजा ने कहा अरे मूर्ख, इतना बड़ा ऊंट क्या इतने छोटे से घर में आ सकता है। तो भक्त ने कहा मैं यही कहना चाहता हूं, इतने बड़े विभु भगवान क्या आपके इतने छोटे से महल में आ सकते हैं। उस विभु भगवान को प्राप्त करने के लिए इस महल को छोड़कर जंगल में जाना चाहिए। राजन जंगल में जाओ, वहां पर भगवान की प्राप्ति होगी। जब एक छोटा सा ऊंट किसी के घर पर नहीं आ सकता है तो इतने बड़े भगवान किसके घर पर आए। भगवान की प्राप्ति करने के लिए सत्वगुणी वातावरण चाहिए, इसलिए वन बहुत अच्छा है। ध्रुव महाराज वन में जाने के लिए तैयार हुए और अपने पितु पुरात कैसे निकले। देखिए मैत्रे मुनि भी बहुत सावधान है। मैत्रे मुनि कहते हैं निश्चक्राम पितु पुरात। ये पूर्व शब्द एक आचार्य लिखते हैं कि मैत्रे जी कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपने पूर्व से निकल गए। वे विदुर जी को कहना चाहते हैं कि हे विदुर जी, आप हस्तिनापुर की सभा को छोड़कर हस्तिनापुर को जैसे छोड़ दिए, वैसे ही ध्रुव महाराज अपने पिता के पूर को छोड़ दिए। याद करा रहे हैं विदुर जी, आपने जैसे भक्ति भाव से अपने हस्तिनापुर को छोड़ दिया, वैसे ही ध्रुव ने पितु पुरा अपने पिता के पूर को छोड़ दिया और जंगल में जाने के लिए निकल पड़े। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज जंगल में जाने के लिए निकल पड़े हैं। वास्तव में भगवान की प्राप्ति ध्रुव को करनी है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए 8 स्टेप है और उसमें से सबसे पहला स्टेप है श्रद्धा। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा चाहिए और यहां पर अपने माता के उपदेश सुनकर ध्रुव महाराज को श्रद्धा आ गई। अब श्रद्धा के बाद दूसरा कदम भक्ति में होता है साधु संघ और उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम और फिर भगवान मिलते हैं। परंतु पहला कदम है श्रद्धा और दूसरा कदम है साधु संघ। ध्रुव महाराज को अपने माता का उपदेश सुनकर श्रद्धा हो गई। अब अगले श्लोक में ध्रुव महाराज का साधु संघ होगा। कैसे साधु संघ होगा? ध्रुव महाराज घर छोड़कर निकले हैं और ध्रुव महाराज घर छोड़कर निकले हैं यह बात कैसे भी करके भगवान के मनो अवतार, अभी इस कथा में एक नया पात्र आ रहा है। ध्रुव महाराज का घर छोड़कर निकलना और यह बात भगवान के मनो अवतार भगवान के परम भक्त नारद मुनि को पता चल गई। अब नारद मुनि तो यही ताक में बैठकर रहते हैं कि कब किसी को प्रचार करो। नारद मुनि तो देखते रहते हैं कोई मिल जाए प्रचार करो और उसे भक्त बना दो। नारद मुनि भक्त बनाने में बहुत एक्सपर्ट है और यूथ प्रीचर है, बूढ़ों को बहुत प्रचार नहीं करते हैं, कभी कभार कर देते हैं चित्रकेतु जैसे महाराज को। और जिस दिन से चित्रकेतु महाराज के पास गए, एक व्यक्ति नहीं समझा सका, 2 जन को जाना पड़ा, अंगिरा और नारद, तब जाकर वो बूढ़ा समझा। परंतु नारद मुनि सोच गए कि यूथ प्रीचिंग करना बहुत अच्छा है और यूथ प्रीचिंग में नंबर 1 एक्सपर्ट है नारद मुनि। और जब भक्त बनाते थे एक साथ हजारों, 10 प्रजापति के 10,000 पुत्र, 10,000 पुत्रों को दक्ष प्रजापति ने जन्म दिया और 10,000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए जंगल में भेजा। तपस्या करके ये 10,000 पुत्र जब वापस आ रहे थे, नारद मुनि ने सोचा कि देखो अच्छा मौका है यूथ प्रीचिंग करने का। रास्ते में मिले और मिलकर सबसे पहले पूछा कहां जा रहे हो। 10,000 पुत्र एक साथ कहते हैं हमारे पिताजी के घर पर जा रहे हैं, उन्होंने लड़की देखकर तैयार रखा है, घर पे जाकर विवाह करना है और फिर प्रजा की सृष्टि करनी है। अच्छा, प्रजा की सृष्टि करोगे? सृष्टि करोगे तुम? पहले सृष्टि के बारे में जानते हो? नारद मुनि ने सृष्टि के बारे में 10 प्रश्न पूछा, 10 प्रश्न सुनकर 10 मिनट में 10,000 पुत्रों, 10 प्रजापति के पुत्र सफेद कपड़े पहने थे, नारद ने लाल करवा दिए, सबको ब्रह्मचारी बना दिया। और ये 10 प्रजापति के 10,000 पुत्र घर पे न जाकर मंदिर में चले गए। 10 प्रजापति चिंतित, अब क्या कर, वे तो दक्ष था ही, उनका नाम दक्ष इसलिए रखा गया क्योंकि पुत्र उत्पन्न करने में बहुत दक्ष था, और उसने 1,000 पुत्र को प्रकट किया, उसे भी तपस्या करने भेजा। ये भी जब वापस आ रहे थे तो नारद ने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, एक साथ 1,000 का लौट मिल जाएगा। नारद मुनि आए, रास्ते में आकर इतना ही कहा कि देखो बड़े भाई जो करते हैं वही करना चाहिए, बड़े भाइयों का अनुगमन करना चाहिए, बड़े भाई लाल कपड़े पहनकर ब्रह्मचारी बन गए, तुम भी बन जाओ। हाँ, ये बात सही है, 1,000 भी ब्रह्मचारी बन गए, अब क्या कर। इस प्रकार दक्ष प्रजापति पुत्र उत्पन्न करता गया, नारद मुनि बनाते गए। प्रभुपाद जी इस प्रसंग के तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि दक्ष जो था, यह दक्ष पुत्र उत्पन्न करने में बहुत एक्सपर्ट था। वैसे इस संसार में सब लोग पुत्र उत्पन्न करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, किसी के 2, किसी के 5, किसी के 10। तो संसार के लोग पुत्र उत्पन्न करने में एक्सपर्ट भले होते रहे, हमें नारद मुनि की तरह उसे भक्त बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। लोग पुत्र उत्पन्न करें, हम उसे भक्त बनाते रहेंगे। नारद मुनि बहुत बड़े प्रचारक, यूथ प्रीचर। सुना कि ध्रुव घर से निकला है, तब नारद मुनि बजाए वीणा। नारद मुनि का बहुत सुंदर काम है, हमारे आचार्य गाते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद
रमण नामे,
नाम अमनी उदित हय भगत गीत सामे,
नाम अमनी उदित हय भगत गीत सामे।
नारद मुनि हाथ में वीणा लेकर घूमते रहते हैं संसार का उद्धार करने के लिए, और राधिका रमण नाम है, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर सब जगह पर वे घूमते रहते हैं।
श्री कृष्ण नाम रसन स्फूरी पूरा लगामार आशो,
कृष्ण नाम रसन स्फूरी पूरा लगामार आशो,
श्रीरूप पदे याचयतीहा भक्ति विनोद दास,
श्रीरूप पदे याचयतीहा भक्ति विनोद दास।
नारद मुनि हाथ में वीणा लेकर सबका उद्धार करते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जैसे नारद मुनि सबका उद्धार करते हैं, कभी कभार कृपया करके आप हमारा भी उद्धार कर दीजिएगा। ध्रुव महाराज निकले हैं और मैत्रेय मुनि कथा को आगे बढ़ाते हैं।
नारद सदुपाकरण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्येन पाणिना प्राह विस्मित।
तत् माने ध्रुव महाराज जो घर से निकल गए हैं, वह उपाकर्ण्य अपने कानों से सुनकर ज्ञातवा, नारद मुनि ने सब कुछ जान लिया, किस प्रकार से जाना? एक आचार्य कहते हैं, तत्पूर्ववासीभ्य उप समीप एव श्रुत्वा। नारद मुनि चलते चलते उत्तानपाद के राज्य में गए थे और उपाश्रित श्रुत्य उपकार तथा निकट, श्रुत्य का अर्थ है सुनना। पूर्ववासी के निकट जाकर पूर्ववासियों के मुख से नारद मुनि ने सुन लिया, ये पहला अर्थ है। विजयध्वज जी कहते हैं, उपाकरणीय इति अनेन नारदस्य दूर श्रवण शक्ति योगींद्रत्वात् समान इति भाव। नारद मुनि जो है योगियों के समान है, वे दूर से ही जान लेते हैं कि कौन व्यक्ति क्या करना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। यहां तक नारद मुनि भगवान के मन में क्या चल रहा है यह भी जान लेते हैं, तो संसार के जीव की बात तो दूर ही रही। सर्वदेश कालज्ञ कहा जाता है, सभी समय तीनों कालों के बारे में जानने वाले श्री नारद मुनि है। ऐसे नारद मुनि ने जान लिया और जानकर ध्रुव महाराज के पास आए। नारद मुनि ध्रुव महाराज के पास क्यों आए, इस बात का निरूपण करते हुए जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बहुत सुंदर पॉइंट कहते हैं कि नारद मुनि ध्रुव महाराज के पास आने का वास्तविक कारण क्या था। जीव गोस्वामी कहते हैं, नारदो यत इच्छय एव आगत सन्निति गेयम। यत माने भगवान। जैसे ध्रुव महाराज घर से निकले, तुरंत भगवान ने नारद मुनि को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को ध्रुव के पास भेजा। यह सत्य बात है, जब कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जब किसी व्यक्ति के मन में भगवान को प्राप्त करने का शुद्ध भाव होता है, तब उस पर भगवान की कृपा होती है और भगवान की कृपा के साथ साथ गुरु की कृपा होती है और गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता। भगवान और गुरु की कृपा से वह व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। तो भगवान के कहने पर नारद मुनि वहां पर आए, ध्रुव को रास्ते में मिले। ध्रुव महाराज ने देखा कि ये घेरवे वस्त्र में कोई आकर खड़ा है, वे तो जानते नहीं थे इतना। ध्रुव महाराज यह भी नहीं जानते थे कि कोई व्यक्ति यदि मिलता है तो उसे चरणों में प्रणाम करके वांछा कल्प तरु करना चाहिए, कुछ नहीं जानते थे। नारद मुनि रास्ते में खड़े थे, ध्रुव महाराज भी खड़े रह गए। जंगल के अलावा कोई व्यक्ति नहीं था, किसी मनुष्य को देखकर ध्रुव महाराज खड़े रह गए। ध्रुव महाराज खड़े थे तो नारद मुनि ने अपना वरद हस्त, अपना हाथ ध्रुव महाराज के सिर के ऊपर घुमाया। वे हाथ कैसा है? मैत्रेय मुनि कहते हैं अघघ्नेन। अघ का अर्थ होता है पाप और घ्नेन का अर्थ होता है नाश करने वाला। नारद मुनि का हाथ पाप को नाश करने वाला है। तो प्रश्न होता है, ध्रुव महाराज ने कौन सा बड़ा पाप किया था? ध्रुव महाराज क्या बहुत बड़े पापी थे कि नारद मुनि को अपना पाप दूर करने वाला हाथ घुमाना पड़ा? तब विजयध्वज नाम के आचार्य कहते हैं, अघघ्नेन सर्व दुरित विनाशेन इति। पाप का अर्थ सब समय दुष्कृत्य ही नहीं होता है, यहां पर पाप का अर्थ है भगवान से दूरी। भगवान से कोई व्यक्ति यदि दूर है तो उसे भी पाप कहा जाता है। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के सिर पर हाथ घुमाकर भगवान के साथ जो दूरी थी वो दूरी कम कर दी। भगवान के साथ दूरी कम करने वाला नारद मुनि का हाथ ध्रुव महाराज के सिर के ऊपर घुमा और स्पृष्टवा ध्रुव महाराज को स्पर्श किया। स्पर्श क्या किया? विजयध्वज जी कहते हैं, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को अपना प्रसाद आशीर्वाद दे दिया कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो, मन ही मन। तो इस प्रकार से नारद मुनि खड़े हैं, अपना हाथ घुमाया और नारद मुनि अपने मन ही मन में सोच रहे हैं। ध्रुव के बारे में वे जान गए थे, तो अगले श्लोक में मन ही मन में सोच रहे हैं, अहो तेज क्षत्रिया मानवंगम मृष्यता बालो प्रियं मृदाधते यत्समातु नारद ने कहा, हो तेज क्षत्रिया नाम, जरा क्षत्रियो का तेज तो देखो। मन ही मन में सोच रहे हैं, ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, ये क्षत्रियो का प्रभाव तो देखो। अपनी सौतेली माता ने थोड़ा कटु वचन कह दिया तो उसके लिए ये घर छोड़कर जंगल में जाने के लिए निकल पड़ा। क्षत्रियो का प्रभाव बहुत कठोर होता है। तब नारद मुनि ध्रुव महाराज से कहते हैं, नादु नाप्यव मानम ते सम्मानम वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिश। अधुना, अधुना माने इस समय, हे ध्रुव, हे ध्रुव, इस समय ये 5 साल की आयु तो खेलने कूदने की है। कुमारस्य अवमानम सम्मानम न, हे ध्रुव, तुम तो 5 साल के बालक हो, खेलने कूदने की आयु है, तुम जंगल में जाने के लिए क्यों निकल पड़े। मान लो ध्रुव ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है, तब नारद मुनि कहते हैं, बेटा अब बालक का क्या सम्मान और क्या अपमान। बालक को कोई गाली दे दे या मां भागवत करके पूजने लगे या उसकी आरती उतारे तो बालक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बालक के मन में ऐसा नहीं होता है कि मुझे पूज रहे हैं या मुझे गाली दे रहे हैं। तो कुमारस्य अवमानम सम्मानम न, कुमार बालकों को सम्मान और अवमान का कोई भाव नहीं रहता है। तो मानो ध्रुव महाराज कहे, यदि ब्रुयात अहम वयसा बालो न बुद्धि इति। नारद मुनि देखो, आपको दिखने में मैं छोटा लग रहा हूं परंतु मेरी बुद्धि छोटी नहीं है, मैं कोई छोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। तब नारद मुनि उसे उपदेश देते हैं कि ध्रुव, विकल्पे विद्यमाने भी नहीं संतोष हेतव पुंसो मोह मुर्दे भिन्ना ये लोक निज कर्म भी। इस संसार में मान और अपमान, तुम यही मान रहे हो कि मेरा अपमान हुआ है। इस संसार में मान और अपमान का वास्तविक कारण सुरुचि नहीं है, मान और अपमान का वास्तविक कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति को लगता है कि मुझे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और अपमान होगा। अज्ञान क्या है? अज्ञान का अर्थ होता है कि वास्तव में हम आत्मा हैं और अपने स्वरूप आत्मा को भूलकर ये देह में मैं बुद्धि कर लेना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं और यह भूलकर इस शरीर को ही मैं मानने लगता है, तब व्यक्ति यह मान सम्मान अभिमान ये सब भाव में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो गाली शरीर को दे रहा है। देखिए, यदि ज्ञान है तो आप समझ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो गाली तो शरीर को दे रहा है, परंतु हम यह शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, आत्मा को तो यह गाली लग नहीं रही है। यदि किसी का अपमान कर दिया तो अपमान इस शरीर का किया, आत्मा को तो कोई अपमान नहीं है। तो जब तक यह झूठी भावना, यह अज्ञान कि हम यह शरीर है, आत्मा नहीं है, जब तक यह अज्ञान है तब तक यह मान सम्मान अभिमान यह भावना होती है। ज्ञान होने पर यह सारी भावना दूर हो जाती है। जैसे गौतम बुद्ध, बुद्ध के जीवन में एक बहुत सुंदर घटना घटी। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और आकर उसे बहुत गाली देने लगा, बहुत गाली की बौछार कर दी। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कुछ लोगों को ब्रह्मचारी बनाकर रखा था और ब्रह्मचारी के माता पिता आए थे उनके पास। बुद्ध जी को, भगवान को बहुत गाली दिया। जब वह गाली देकर थक गया तब गौतम बुद्ध ने इतना ही कहा कि देखो, आपके घर पर जब मेहमान आते हैं तब आप क्या करते हो? वो क्रोध में कहता है, उसका स्वागत करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, स्वागत में क्या करते हो? उसे पानी देते हैं, जूस पिलाते हैं, कुछ फल फ्रूट इत्यादि देते हैं। अच्छा, वे यदि आपका पानी फल इत्यादि ग्रहण न करे तब क्या करना है? हम स्वयं रख लेंगे। यदि वे पानी और फल नहीं रखेंगे तो हम खुद रख लेंगे। तो देखो भाई साहब, आप 1 घंटे से जो गाली दे रहे हो मैंने स्वीकार नहीं किया तो ये किसके पास रहेगी? बेचारा पानी पानी हो गया और वापस चला गया। यह सत्य है। जिसके पास ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा है, तो आत्मा का तो कोई अपमान नहीं है, कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं। और नारद मुनि का कहने का भाव है कि इस शरीर को मान लीजिए किसी ने कुछ गलत कह भी दिया तो इस शरीर में क्या अच्छा है। मान लीजिए कोई इस शरीर को गाली देता है तो ये शरीर गाली देने जैसा ही तो है, और क्या है इसमें। रोज प्रसाद लेने से पहले गाते तो हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल। हम खुद हमारे शरीर को अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल गाली देते, दूसरों ने दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। उसमें क्या मान क्या सम्मान। एक आचार्य कहते हैं कोई व्यक्ति एक जाली में बंधा हुआ है, जाली में कैद बंद है, उस कैदी व्यक्ति को सुंदर मेकअप किया जाए, आभूषण पहना जाए, क्या फर्क पड़ता है। उसे कितना भी मेकअप करो, कितना भी आभूषण पहनाओ, जब तक वह जाल में है तब तक उसे कोई फर्क नहीं। ठीक उसी प्रकार ये जो भी मान अपमान सम्मान, इसे आत्मा को अर्थात वास्तव में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस शरीर को है और हम ये शरीर नहीं है। नारद मुनि कहते हैं विकल्प विद्यमाने भी नहीं संतोष है तव। इस संसार में मान अपमान ये जो भी है ध्रुव, ये अज्ञान के कारण है। यत लोक के निज कर्म भी, और ये मान अपमान अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं, निज कर्म भी। यदि तुम नहीं चाहोगे फिर भी तुम्हें मान मिलेगा, और नहीं चाहोगे फिर भी अपमान मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी न चाहने पर भी मान मिल जाता है, और इस संसार में कोई भी नहीं चाहता है फिर भी अपमान हो जाता है। ये मान अपमान सुख दुख ये सब कुछ कर्म के ऊपर, कर्म के अधीन होता है। यदि आपके कर्म में सम्मान प्रतिष्ठा लिखी है तो मिलेगी। आप कितना भी प्रयास कर लो प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने का, यदि कर्म में नहीं लिखा है तो कभी नहीं। ये ध्रुव महाराज, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, आज सब लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जगह जगह पर बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, अपना फोटो लगाते हैं, पेपर में छपाते हैं, फिर भी उसकी कोई ख्याति नहीं है। और सब छोड़ दीजिए, ध्रुव को ही ले लीजिए। ध्रुव का न तो कोई बैनर छपा है, न तो कोई पेपर में आया है, न तो कुछ विज्ञापन, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, लेकिन फिर भी आज भी इस बात को बीते करोड़ों साल बीत गए, फिर भी आज भी लोग इसकी कथा सुन रहे हैं, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रतिष्ठा हो रही है। तो यदि कर्म में लिखा है तो निश्चित ये मिलेगा। जैसे प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को ज्ञान देते हुए कहते हैं सुखम ऐन्द्रियकम देवा देह योगेन देही नाम सर्वत्र लभते देवा यथा दुखम यत्नतः। प्रहलाद महाराज ने जब कहा कि हे मेरे सहपाठी बालकों, कोमर आश्रित प्राज्ञो, कोमर अवस्था से ही भगवान की भक्ति करो। तब ये बालकों ने कहा तो क्या सुखी होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, ऑफिस नहीं जाना है, काम धंधा नहीं करना है, सुखी होने के लिए कुछ तो करना है। तब प्रहलाद महाराज ने कहा देखो आप दुख प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो। दुख प्राप्त करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं फिर भी आ रहे हैं। जैसे दुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं फिर भी दुख आ रहे हैं, वैसे भी सुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे फिर भी सुख आएंगे न चाहते हुए भी। यदि कर्म में लिखा है तो निश्चित सुख आएगा। इसलिए हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए, सुख और दुख के लिए नहीं घूमना चाहिए। नारद मुनि ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि कर्म के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। इसलिए हे ध्रुव परितुष्येत, तुम्हें जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। इति षड्भी। शिपा सिद्ध स्वामी कहते हैं कि अगले छह श्लोक में नारद मुनि ध्रुव महाराज को संतुष्ट रहने के लिए उपदेश दे रहे हैं। परितुष्येत तस्तात तावन मात्रेण पुरुष देवोपसादितम यावत ईश्वरम गतिम बुध। हे ध्रुव अपने कर्म के अनुसार जो भी मिलता है तावत मात्रेण पुरुष जो भी मिल जाता है उसे परितुष्यत उसे संतुष्ट रहना चाहिए। कर्म के अनुसार जो भी मिले, जितना धन मिले, जो घर मिले, जो पत्नी मिले, जो बच्चे मिले, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि किसी के पास संतोष नहीं है और असंतोषी व्यक्ति के पास कुछ भी आ जाए फिर भी वह दुखी ही रहेगा। कहा गया है कि असंतोष, जिसके हृदय में असंतोष है उसे संसार की सारी संपत्ति दी जाए, सारा धन दिया जाए, सारा सोना दिया जाए, सभी स्त्रियां दी जाए, सभी होटल, सभी घर बिल्डिंग उसके नाम पर की जाए, परंतु हृदय में संतोष नहीं है तो ये सारे धन के ढेर के बीच में बैठकर भी वे दुखी ही होता रहेगा। परंतु हृदय में संतोष है और केवल झोपड़ी में रह रहा है फिर भी वह सुखी होगा। संतोष नहीं है तो एसी के बीच में रहकर भी व्यक्ति जलता रहेगा। संतोष ये बहुत बड़ा धन है। कहते हई गज हई धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष नामक धन जब आ जाता है तब ये सभी धन धूल के समान लगता है, तुच्छ लगने लगता है। इसलिए हे ध्रुव, तावन मात्रेण जितना मिलता है उसमें संतोष रहो, और जो भी मिलता है देव उपसादितम, कर्म के अनुसार नसीब में जो लिखा है वही मिलने वाला है। इसके लिए हार्ड वर्क परिश्रम नहीं करना चाहिए, जो भी कर्म में लिखा है वही मिलेगा। इस संसार में क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कितना सुख, कौन सा कॉलेज, कौन सी स्कूल, कितना धन, ये सब कुछ कर्म के अनुसार मिलता है। सब कुछ देव उपसादितम, हमारे नसीब के अनुसार मिलता है। इसलिए बस केवल नसीब की राह देखनी चाहिए। इसके लिए लोग कहते हैं हार्ड वर्क, हार्ड परिश्रम, हार्ड मेहनत नहीं करनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे, एक शिष्य सुन रहा था और सोचा कि आज गुरुजी के इस प्रवचन को झूठा करके दिखाऊंगा। प्रवचन के बाद गुरुजी को मिला, कहा गुरुजी आपने कहा कि कर्म में जो लिखा है वही मिलता है, बताओ मुझे कल क्या खाने मिलेगा, कल भोजन में मुझे क्या मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि कल तुम्हारे भोजन में खीर खाने को लिखी है, कल तुम्हें खीर मिलेगी। शिष्य ने सोचा कि कैसे भी करके कल गुरुजी को झूठा ठहरा दूंगा, बहुत अपने आप को बड़ा मानते हैं, और यदि घर पर रहूंगा तो खीर बनाऊंगा, लोग खिलाएंगे, जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा, कौन आएगा खीर खिलाने। दूसरे दिन सुबह होते ही वे जंगल में गया और जंगल में भी एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, खीर नहीं खाऊंगा। लेकिन देव उपसादितम, जिसके देव में, जिसके नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहना है। दोपहर के 11-12 बजे उस समय कुछ गाय और बकरी के रखवाली करने वाले कई सारी गाय और बकरियों को लेकर उस जंगल के रास्ते से निकले और कई दूर से चलते हुए आ रहे थे। बेचारे थक गए थे और बहुत भूख लगी थी। ये जिस पेड़ के नीचे ऊपर बैठा था उसी पेड़ के पास खड़े रहकर सब लोग सोचने लगे क्या करें क्या करें। तो सब लोग ने सोचा कि गाय तो हमारे पास है, दूध निकाल देते हैं, दो लेते हैं, और चावल हमारे पास है, थोड़ी चीनी डाल देते हैं, खीर बना देते हैं। एक बहुत बड़ा पात्र उसी पेड़ के नीचे रखा, नीचे से अग्नि लगाई, दूध डाला, चावल डाला और शक्कर डाली और खीर पकना शुरू हो गया। ऊपर बैठे बैठे सोच रहा है कि घर को छोड़कर यहां आया, यहां पर खीर पक रही है, परंतु जब मैं खाऊंगा तो होगा ना, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, नीचे उतरूंगा ही नहीं। यहां पर बहुत अच्छी तरह से खीर पक रही है। उतने में एक व्यक्ति समाचार लेकर दौड़ते दौड़ते आया कि बहुत बड़े बड़े डाकू इसी रास्ते से निकलने वाले हैं, और ये लोगों का तो धन ही गोधन था, कहीं गाय को मार डालेंगे, लेकर भाग जाएंगे, इससे अच्छा है ये खीर भले यहां पर पड़ी रहे, हम लोग हमारे धन गाय और बकरी को लेकर भाग जाते हैं। ये सब लोग खीर के पात्र को वहीं गर्म चूल्हे पर छोड़ दिए और ये सब भाग गए। वो डाकुओं की टोली घूमते घूमते वहां पर आई और देखा, डाकुओं को भी भूख लगी थी और देखा कि यहां तो खीर पक रही है, सब लोग घोड़े से नीचे उतरे। डाकुओं का सरदार जैसे ही खीर खाने गया तो वहां एक व्यक्ति ने कहा कि देखो देखो ये किसी की साजिश है, किसी ने हमें मारने के लिए इस खीर में जहर मिलाया होगा, नहीं तो इतनी सुंदर खीर, वो भी इस्कॉन की खीर, यहां कौन छोड़कर जाएगा। हमारे इस्कॉन में खीर फेमस है, यहाँ इतनी अच्छी खीर छोड़कर इतने शुद्ध गाय के दूध की खीर, लगता है इसमें जहर मिला है, हमको मारने की साजिश रची गई है। देखो ढूंढो किसने इसमें जहर मिलाया है। सारी सेना को कह दिया, आजू बाजू में सब जगह पर ढूंढो, सब लोग ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति की नजर उसी पेड़ के ऊपर गई, मिल गया। ये पेड़ के ऊपर जो बैठा है इसने ही इसमें जहर मिलाया है और ऊपर जाकर बैठ गया। डाकू ने कहा उसे नीचे उतारो। उसने कहा मैं नीचे नहीं उतरूंगा। चार पांच डाकू ऊपर चढ़े और कैसे भी करके उसे नीचे उतारे। नीचे उतार कर बांध दिए और कहे कि देखो भाई मैं खीर नहीं खाऊंगा। अब तो कंफर्म हो गया कि इसने ही खीर बनाई। सरदार डाकुओं के सरदार ने कहा देखो इसके दोनों हाथ पांव बांध दो और खीर खिलाओ। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इस पर करो, यदि जहर मिलाया है तो ये पहले मरेगा। वो कहा कि नहीं खाऊंगा भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती डाकू के सरदार ने उसे खीर खिला दी। दूसरे दिन दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी आपने जो कहा था देव के अनुसार कर्म में जो लिखा है वह कैसी भी करके मिलता है, ये सत्य है, ये साबित हो गया। यहां पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं कि हे ध्रुव, कर्म में जो लिखा है, नसीब में जो लिखा है, उसी प्रकार सुख दुख मान अपमान सब मिलते हैं। इसलिए यह सब प्रयास करने की, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी इस संसार में हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, नसीब में जो है। एक बार श्री प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप कहते हो कि नसीब के अनुसार सब कुछ मिलता है, तो क्या हमें घर पर केवल सोना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मेहनत करनी चाहिए परंतु हार्ड वर्किंग नहीं करनी चाहिए, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी कितनी मेहनत करनी चाहिए? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि मान लीजिए दिल्ली में आपका कोई कुटुंबीजन, कोई परिवार वाला रह रहा है और आपके लिए एक पार्सल भेजा है। दिल्ली से पार्सल बंबई में आपको कोई भेजा है, तो आपको कितना मेहनत करना है, घर से निकलना है और वो पार्सल लेकर घर पर आना है, इतना मेहनत बिजनेस और काम धंधे में करनी चाहिए। इससे ज्यादा मेहनत करना आवश्यक नहीं है। परंतु इस संसार में कुछ लोग क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, घर से निकलते हैं, सभी ट्रेनों में जा जाकर देखते हैं, यहां पर कमाने को मिलेगा, यहां मिलेगा, इस बस में, इस दुकान में, यहां वहां, यहां यहां यहां, इतना नहीं मेहनत, जितना लिखा है उतना करके आ जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से उत्तर दिया, हार्ड वर्किंग मेहनत करनी चाहिए परंतु महा मेहनत तो केवल भक्ति के लिए होनी चाहिए। नारद मुनि ने कहा देव उपसादितम, हमारे कर्म में जो मिलता है वही मिलता है, कर्म में जो लिखा है वही मिलता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस शब्द के ऊपर बहुत सुंदर एक बात कहे हैं कि ईश्वर अनुकूल्यम विना न उद्यमा फल भवेत इति। कहते हैं कि आपके नसीब में जो लिखा है वही मिलता है, परंतु फिर भी उसे देने वाले ईश्वर है, इसलिए नसीब को देव कहा जाता है। नसीब में जो होता है वही मिलता है परंतु उसे देने वाले देव अर्थात ईश्वर भगवान है। उदाहरण के तौर पर बैंक में आपके 1,00,000 रुपया जमा है, 1,00,000 रुपया जमा है, उसे निकालने के लिए डायरेक्ट जाकर आप नहीं ले सकते हो। यद्यपि वह पैसे आपके हैं परंतु उसे देने वाला मैनेजर होता है। वैसे ही कर्म का फल आपका अपना है, फिर भी उसे देने वाले भगवान है। और जीव गोस्वामी कहते हैं देवम ईश्वरो वा, कहते हैं कि भगवान के हाथ में स्वतंत्रता है, वे जिस जीव को जितना देना चाहते हैं उतना ही देते हैं। हम कर्म करते हैं और कर्म का फल भी भगवान के हाथ में है, किसी को कम फल तो किसी को ज्यादा, भगवान स्वतंत्र है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भागवत अष्टम स्कंद समुद्र मंथन प्रसंग। समुद्र मंथन देवताओं ने भी किया और असुरों ने भी किया। जितनी मेहनत देवताओं ने की उतनी मेहनत असुरों ने भी की। जितने पढ़े लिखे देवता थे उतने पढ़े लिखे असुर भी थे, सब कुछ समान, कार्य भी समान, गुण भी समान, मेहनत भी समान, सब कुछ समान, लेकिन फल किसे मिला? केवल देवताओं को मिला। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे जो नसीब में लिखा है हम कैसे भी करके ले लेंगे, उसे देने वाले भी आखिर भगवान है। इसलिए नसीब में जो है उसे प्राप्त करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से नारद ने समझाया कि देखो भाई ध्रुव, कर्म में जो लिखा है देव उपसादितम, भगवान के द्वारा जो मिलता है वही लेकर संतुष्ट रहना चाहिए। गतिम बुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से अपना आचरण करता है। तो मानो ध्रुव कहे कि हाँ, मैं मानता हूं कि यह भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, मैं मानता हूं। नारद जी, आपने कहा कि भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, परंतु भक्ति करने के लिए तो मेहनत करनी चाहिए। बहुत सुंदर सिद्धांत है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, तव तू प्रईप्सितो अयम उद्यमो अति कठिन इति आह। इस संसार में धन कमाने के लिए, पत्नी प्राप्त करने के लिए, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, ये सब कर्म में लिखा है, सब मिलेगा, परंतु भक्ति जो है ये कर्म में नहीं लिखी होती है, ये तो करनी पड़ती है। ध्रुव महाराज ने कहा कि अन्य सब भौतिक वस्तुएं आप जैसे कहते हो वैसे कर्म से मिलती है, परंतु भक्ति करने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। नारद मुनि ने कहा, हाँ ये सत्य बात है, भक्ति करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अथ मात्रोपदिष्टेन योगिनावरुरुच्यसि यत् प्रसादं सवे पुंसा दुराध्यायो मतो मम। नारद जी कहते हैं, ध्रुव क्या तुम ऐसा सोचते हो कि भगवान रास्ते में पड़े हैं लेकर घर पर आ जाओगे? नहीं नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम जिस कार्य के लिए निकले हो इसमें बहुत मेहनत है। ये कोई खाने का काम नहीं है कि 5 साल का बालक निकल पड़ा और लेकर घर पर आ जाएगा, नहीं। दुराध्ययो, ये बहुत कठिन है भगवान की प्राप्ति करना। कहते हैं वीर राघव जी, कहते हैं दुखेन अपि आराध्ये तुम अशक्य इति। केवल कठिन ही नहीं, भगवान को प्राप्त करना अशक्य भी है। नारद मुनि डरा रहे हैं। वे भगवान, मान लीजिए किसी को मिलते हैं परंतु मिलने वाले को रुला मारते हैं, बहुत बहुत मेहनत, बेचारा भक्त मेहनत कर करके थक जाता है, तब जाकर वे एक बार दर्शन देते हैं। इस संसार में इतिहास खोलकर नारद ने दिखाया होगा कि देख लो प्रहलाद, कितना कष्ट आया, कितना कष्ट आया, तब जाकर भगवान मिले। वे रास्ते में थोड़ी ना पड़े हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। एक से एक कष्ट प्रहलाद के ऊपर आया। दिग्गजे दंड सुकेश अभिचारा व पातने। उनका पिता सबसे बड़ा असुर था और पिता ही दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन था, और भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट पिता दे रहा था, और भक्ति नहीं कर देने के लिए, कराने के लिए वह पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद को दिग्गजे बड़े बड़े हाथियों से मारने का प्रयास कराया, दंत सुकेश बड़े बड़े सांपों के द्वारा मारने का प्रयास, होलिका की गोद में बिठाकर जलाने का प्रयास, पहाड़ों से फेंकने का प्रयास, समुद्र में डुबा देने का प्रयास, एक से एक प्रयास मारने का किया। प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने इतने कष्ट आए, तब जाकर भगवान मिले। भगवान आसानी से नहीं मिलते हैं। नो पेन नो गेन, बिना दर्द से भगवान नहीं मिलते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए वे भक्तों को तो पहले बहुत रुलाते हैं, बहुत रुला मारते हैं। भक्त जब बहुत बहुत रोता है तब जाकर मिलते हैं। बहुत कठिन है भगवान को प्राप्त करना। और तुम जानते नहीं हो कृष्ण देवकी के जीवन में कितना कष्ट आया। बिचारी का विवाह हुआ उसी दिन से लेकर इतनी दुखी, इतनी दुखी। एक माँ के सामने 6-6 पुत्र उनके सामने वह कंस पटक पटक कर मार देता था। अरे एक माँ के छोटे से पुत्र को थोड़ी सी खरोच आ जाती है तो माँ के हृदय में दुख होता है, और इतने नन्हे मुन्ने कोमल बालक को अपने आंख के सामने पत्थर से पटक कर मार देना, कितना दुख हुआ होगा उस माँ को। ऐसे एक नहीं छह छह पुत्र उसके आंख के सामने पटक कर मारे गए। तब जाकर कृष्ण उनके गर्भ से जन्म लिए और जन्म लेकर चले गए तुरंत। वे भगवान की प्राप्ति करना आसान नहीं है, और ये सत्य बात है। भगवान मिलते हैं परंतु उसको प्राप्त करने के लिए धैर्य उत्साहत निश्चयात धैर्य होना चाहिए। रामायण में शबरी जी की कथा आती है, बिचारी कितना धैर्य था उन्हें। कुछ लोग सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं, आप क्या चाहते हो 2 महीने में भगवान मिल जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है। शबरी जी की कथा रामायण में मैं कह रहा था। अगले जन्म में एक राजा की पुत्री थी, राजा की कुंवरी थी, बहुत भगवान की भक्त थी। एक बार तीर्थराज प्रयाग में गई, साधु संतों को देखा परंतु उसका दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि राजा की पुत्री होने के कारण उसके आजू बाजू में पहरेदार सिपाही इत्यादि इतना रिस्ट्रिक्शन था कि वे भक्ति नहीं कर पाती थी। अंत में मरते समय भगवान से यही प्रार्थना किया कि प्रभु जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभि एद मान मदह कुमान। इस संसार में जो धनी लोग हैं, जिसके पास धन है, पद है, मान प्रतिष्ठा है, वे लोग कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूसरा जन्म यदि आपको मुझे देना हो तो किसी गरीब परिवार में, किसी शूद्र योनि में देना। दूसरा जन्म एक शबर जाति में हुआ। शबर जाति में इसका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम शबरी रखा गया। नाम नहीं है ये शबरी, जातिवाचक नाम है। कहा जाता है कि जिस दिन उनका विवाह था उस दिन कई सारे बकरे उनके घर पर लाकर बांध कर रखे थे। उस दिन रात को शबरी ने अपनी मां को पूछा कि मां आज इतने सारे बकरे हमारे घर पर क्यों बांधे गए हैं। तो मां ने कहा बेटा कल तुम्हारा विवाह है और विवाह में बारातियों को प्रसन्न करने के लिए इस बकरे का मांस खिलाना होगा। इतना सुनकर शबरी जी की आंख में आंसू आ गया और मन ही मन में सोचने लगी कि मुझे एक जीव के लिए, मेरा विवाह करने के लिए इतने जीवों की जान ली जाएगी, इतने प्राणियों को मारा जाएगा, इससे तो अच्छा है कि मैं विवाह करूं ही नहीं। शबरी जी रात तो रात अपना घर छोड़कर भाग गई। घर से बहुत दूर जंगल में मातंग मुनि के आश्रम के पास आई, जिस आश्रम में मातंग मुनि रहते थे, साथ में कई सारे ऋषि मुनि रहते थे। ये लोग सुबह उठकर जगे उसके पहले ही ये शबरी उनके आश्रम में जाती और झाड़ू मारकर बहुत अच्छी तरह से उसका आश्रम साफ कर देती। मातंग मुनि जग कर देखते तो आश्रम बहुत साफ सुथरा। वैसे प्रतिदिन शबरी इस प्रकार से आश्रम को साफ कर दी। एक दिन मातंग मुनि ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर देखा कि शबरी का भाव इतना अच्छा है, इतना शुद्ध भाव है, शबरी को अपने आश्रम में रख लिया। शबरी को भक्ति और ज्ञान की बातें कही और कुछ वर्षों के बाद मातंग मुनि उस आश्रम को छोड़कर चले गए। शबरी अकेली उस आश्रम में बची है, मातंग मुनि जा रहे हैं। शबरी रो रही है कि गुरुजी आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तब मातंग मुनि ने इतना ही कहा कि हे देवी, तुम्हारे हृदय में गुरु और भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि आज भगवान की प्राप्ति करने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ रहा है, परंतु तुम्हारी गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा होने के कारण एक दिन भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। बस गुरु जी ने कह दिया भगवान आएंगे तो आएंगे। गुरु जी चले गए और प्रतिदिन शबरी अपने आश्रम को साफ करके अपने आश्रम के द्वार पर फूल सजा कर रखती कि आज राम आएंगे, परंतु राम नहीं आते थे। दूसरे दिन उसी उत्साह के साथ, देखिए भक्ति में उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, उसी के साथ उत्साह और उसके साथ धैर्य भी होना चाहिए। दूसरे दिन भी उसी उत्साह के साथ, दूसरे दिन भी राम नहीं आए। तीसरे दिन चौथे दिन वैसे एक साल नहीं पचास पचास साल बीत गए फिर भी भगवान नहीं आए। पचासवें साल में भी शबरी रोज सुबह उठकर उसी उत्साह और उसी धैर्य के साथ भगवान की राह देखती थी और हृदय में भगवान से यही प्रार्थना करती थी।
सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या डले ने हूँ तो बनू रे निराशा,
संध्या डले ने हूँ तो बनू रे
निराशा, संध्या डले ने हूँ तो बनू रे निराशा,
संध्या डले ने हूँ तो बनू रे निराशा।
रात दिवस मने सूझे नहीं काय, मारी जो पड़ी ये नवो मारा,
रात दिवस मने सूझे नहीं काय, मारी जो पड़ी ये आओ मारा राम,
मन नो मुरली यो आवी पूरो हैया केरी हाँ, मारी जो पड़ी ये आवो मारा,
एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ, मारी जो पड़ी ये आवो मारा।
खड़िए माने ओछू देखाय छे,
मारे आ खड़िए माने ओछू देखाय छे,
आगे आ खड़िए माने ओछू देखाय छे,
मारे आ खड़िए माने ओछू देखाय छे,
दर्शन बिना मारू दिलड़ू दुभाय 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 छे,
नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण,
मारा प्राण मारी जो पड़े आवो मारा राम,
मन नो मुरली यो रटे तारू
ता।
વાલા તારી જાખી જો થાય,
એક વાર વાલા તારી જાખી જો થાય,
એક વાર વાલા તારી જાખી જો થાય,
એક વાર વાલા તારે જાખી જો થાય,
આંસુ ના બિંદુ થી ધોવ તારા પાય,
આંસુ ના બિંદુ થી ધોવ તારા પાય,
આંસુ ના બિંદુ થી ધોવ તારા પાય, માંગુ સદાય તારા ચરણો માં, મારી જો પડી રે આવો મારા ના,
માંગુ સદાય તારા ચરણો માં,
સીતારામ સ્વામી ને સારુ,
સુખ તારી સીતારામ સ્વામી ને સારુ,
સુખ તારી સીતારામ સ્વામી ને સારુ,
સુખ તારી સીતારામ સ્વામી ને સારુ,
હરી નાખો જીવન કુરબાન મારુ,
કરી નાખો જીવન કુરબાન મારુ,
કરી નાખો જીવન કુરબાન મારુ,
કરી નાખો જીવન કુરબાન મારુ,
રાત દિવસ હું તો જો તારી વાત, મારી જો પડી રે આવો મારા
રાત દિવસ તારી વા, મારી જો પડી રે આવો મારા રા,
મનનો મોરલી જો રત તારું ના, મારી જો પડી રે આવે મારા રા,
દેવી કી જય, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી
જય,
શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી
જય,
હરે કૃષ્ણા
કૃષ્ણા કૃષ્ણા હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.
ઇસ પ્રકાર શબરીજી કો બહોત બહોત સાલો કે બાદ ભગવાન ને દર્શન દિયા, ઓર અંત મે ભગવાન કે ધામ મે ગઈ. નારદ મુનિ કા યહાં પર ધ્રુવ કો ભાવ હૈ કે હે ધ્રુવ, ભગવાન કી તપસ્યા કરને સે ભગવાન મિલતે હૈ પરંતુ બહોત મહેનત કરની પડતી હૈ, ઓર તુજે પતા નહી મુનિય પદવીમ યસ્ય નિસંગો નોરુ જન્મ ભી ન વિદુ મૃગ્યંતોપિ તીવ્ર યોગ સમાધિના. બડે બડે ધ્યાની સિદ્ધ યોગી, બડે બડે યોગી યત્ન કરતે રહ જાતે હૈ, યોગ કરતે રહેતે અપને અષ્ટાંગ યોગ કે દ્વારા હજારો હજારો જન્મ ભી ઉસ પરમાત્મા કા ભગવાન કો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતે હૈ. ધ્યાની ધ્યાન કરતે રહ જાતે હૈ, પરંતુ ભગવાન કી બાત છોડ દીજે, ભગવાન કે ચરણ કા ભી ધ્યાન નહીં કર સકતે હૈ. ઉસ ભગવાન કો પ્રાપ્ત કરને નિકલા હૈ, ક્યા વે આસાની સે પ્રાપ્ત હો જાયેંગે? તતો નિવર્તતામેશ નિર્બંધસ્તવ નિષ્ફલ યતિષ્યતિ ભવાન કાલે શ્રેષામ સમુપસ્થિતે. ઇસલિયે હે ધ્રુવ, मेरी बात मान ले, तू बहुत छोटा बालक है, तू उस भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भगवान की प्राप्ति करने में बहुत मेहनत है, इसलिए श्रेष्ठाम समूह उपस्थित है, जब तू बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब जाकर भगवान की भक्ति करना। मन में प्रश्न होता है कि नारद मुनि उल्टा उपदेश क्यों दे रहे हैं? वहां पर प्रहलाद महाराज को कोमार आश्रित प्राज्ञ बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, और यहाँ ध्रुव को कह रहे हैं कि बूढ़े होने के बाद भक्ति करना। नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे हैं, नारद मुनि को ध्रुव महाराज को दीक्षा देनी है, और दीक्षा देने के पहले जो योग्य गुरु होते हैं वे अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। ऐसे अनाउंसमेंट नहीं कर देते हैं, जिसको लेना है बैठ जाओ, मंत्र यहाँ पर टंगे हैं, जिसको लेना है ले लीजिए, दक्षिणा देकर जाइए। योग्य गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे हैं कि कितने उत्सुक हैं, कितने दृढ़ हैं अपने निर्णय पर, और बहुत सुंदर परीक्षा लेकर यस्य यद देवभीतम सतेन सुख दुखयो आत्मायन तोषेन देहि तमस पारमृच्छति। हे ध्रुव, जीवन में चाहे सुख का समय हो, चाहे दुख का समय हो, कैसा भी समय हो, दोनों सुख दुख दोनों स्थिति में सम रहकर आप अपना जीवन व्यापन करोगे तो भगवान वैसे भी मिल जाएंगे। सुख दुख में सम रहना सीखो, बहुत सुंदर उपदेश है, सुख और दुख में सम रहो, गीता में भी भगवान का यही उपदेश है। परंतु ये कैसे हो, हमें दुख में भी सम रहना है, परंतु जब ऐसी विपरीत स्थिति होती है तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। सुख और दुख में सम कैसे रहना चाहिए, श्रीपाद सिद्ध स्वामी कहते हैं, सुख दुखियो मध्ये सुखे सती पुण्य शीतम इति और दुखे सती पापम शीत। यदि हमारे जीवन में सुख आता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अगले जन्म में कुछ पुण्य किया है, उस पुण्य के फल के स्वरूप हमारे जीवन में सुख आ रहा है। तो यदि हम सुखी हो रहे हैं तो अगले जीवन के जो पुण्य है वह पुण्य कट रहे हैं, अर्थात हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो अपना बैंक बैलेंस कम करना कौन चाहता है? हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो सुख के समय में यह सोचकर बहुत प्रसन्न मत हो जाओ, और जब दुख का समय आता है तब क्या सोचना है? जब दुख का समय आए तो तब यह सोचो कि हमारे पाप का फल ही दुख बनकर आ रहा है, इसलिए हमारे जीवन में हम दुखी हैं, इसका अर्थ है कि हमारा पाप कम हो रहा है। दुखी स्थिति में आप यह सोचो कि हमारे पाप कम हो रहा है, यह सोचकर सुखी रहो, और सुख की स्थिति में यह सोचो कि हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, हमारे पुण्य कम हो रहे हैं, यह सोचकर सम रहो। और इस प्रकार ऐसे सोचकर सम रहोगे तमस पारम रिच्छसी, आप इस प्रकृति मंडलों को त्याग कर भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। इतना सुनकर ध्रुव महाराज तुरंत बोले, स्वयं शमो भगवता सुख दुख दुखात्मताम दर्शित कृपया पुंसा दुर्दशोस मद वैदिस्तुय। हे नारद मुनि, आप बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, सुख दुख में सम रहने के लिए कह रहे हैं, और आप बहुत सुंदर शांति का मार्ग बता रहे हैं, परंतु हमारे जैसे लोगों की दृष्टि ऐसे मार्ग पर जा नहीं रही है। अथापि मैं विनीतस्य शात्रम घोरम पेयुष सुरुच्या दुर्वचनो बाणे भिन्ने श्रते रिदि। आपका उपदेश बहुत अच्छा है, परंतु क्या बताऊं, सुरुचि ने ऐसे तीक्ष्ण शब्दों से मुझे मारा है, सुरुचि ने बाण रूपी शब्द से मेरे हृदय में ऐसा छेद कर दिया है कि आप कितना भी उपदेश दे रहे हो उस छेद से सारा उपदेश निकल जा रहा है। सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों के छेद से जो हॉल हो गया है उस हॉल से आपका सारा उपदेश निकल जा रहा है, ठीक नहीं रहा। इसलिए हे नारद जी, आपका इस उपदेश देने का मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, घोर स्वभाव वाला हूं। और नारद मुनि, एक सत्य बात बताऊं, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगुष साधु वर्त्म में ब्रह्म स्मित पितृ ब्रह्मन अन्य अपि अनधिष्ठितम। नारद मुनि, मैं आपको सत्य बात कर रहा हूं कि अब मुझे मेरे पिता के गादी पे बैठने की जरूरत, बैठना नहीं चाहता हूं। मेरे पिता के पिता मनु महाराज की गादी के ऊपर भी नहीं बैठना चाहता हूं, और उनके पिता ब्रह्मा का पद भी नहीं, ब्रह्मा से भी बड़ा आसन में चाहता हूं। यदि उस आसन को प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई मार्ग है तो बताओ, नहीं तो आप भी चलते बनो। अब उत्तान पर नारद मुनि ने कहा, आपको पिताजी के गोद में बैठना है, तेरा पिता मेरा गुरु है, चलो मेरे साथ, पिताजी को कह दूंगा, बिठा देगा गोद में। ध्रुव ने कहा, नारद मुनि अब वो पिताजी की गोद नहीं चाहिए, पिताजी के पिता मनु भी नहीं, ब्रह्मा जी का भी पद नहीं, ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहता हूं। यदि उस पद को प्राप्त करने के लिए कोई उपाय है तो बताइए, नहीं तो आप भी चलते बनो। इतना सुनकर नारद मुनि को यह हुआ कि नहीं, यह ध्रुव की जो निष्ठा है, ये निष्ठा बहुत कड़ी है, और ध्रुव निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा, निश्चित भगवान को प्राप्त करेगी। परंतु नारद मुनि ने यह सोचा कि यह ध्रुव मेरी सामर्थ्यता को जानता है कि नहीं। नारद मुनि ने यह कहा कि आप ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हो, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं आपको ब्रह्मा जी से बड़ा पद कैसे दिला सकता हूं। तब ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं नारद जी, नूनम भवान भगवतो योग राज परमेष्टिन, आप परम एष्टि के पुत्र हो, आप परम एष्टि ब्रह्मा जी के अंग से जन्म लिए हो, और विदु दंड तटे विनाम हिताय जगतोर कवत, आप अर्क सूर्य के समान इस जगत का कल्याण करते हो, इस जगत में घूमते रहते हो, जैसे सूर्य अपने अक्षय तेज से इस सारे संसार का भरण पोषण करता है। यदि सूर्य न हो तो इस संसार में कोई भी वनस्पति नहीं उग सकती है, कोई जीव जी नहीं सकता है। जैसे सूर्य अकेला है और अकेला होकर भी सारे संसार का पोषण करता है, वैसे ही नारद मुनि आप अपनी वीणा पर भगवान का नाम लेकर सारे भूमंडल का, सभी लोगों का पोषण करते हैं। आप सबको कुछ भी देने के लिए समर्थ हो। नए नारद मुनि, आप यदि चाहो तो मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्रदान करने की शिक्षा दे सकते हो, आप में यह सामर्थ्य है, आप मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बना सकते हो, क्योंकि आप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो। नारद मुनि ने पूछा कि आपको कैसे पता चला मैं वासुदेव का भक्त हूं। एक आचार्य कहते हैं, ध्रुव महाराज ने कहा, गले में वीणा जो टांगा है आपने, ये वीणा देखकर, मृदंग और करताल देखकर पता चल जाता है कि आप भक्त हो। सत्य बात है, नारद मुनि वीणा है और वीणा पर भगवान का नाम लेते हैं। ध्रुव महाराज समझ गए थे कि ये भगवान के भक्त वासुदेव कृष्ण के भक्त हैं। इस प्रकार नारद मुनि के द्वारा ध्रुव की परीक्षा हुई, ध्रुव परीक्षा में पास हुए, और अब और भगवान कैसे हैं और किस प्रकार भगवान मिलेंगे, ये नारद मुनि आने वाले कल के दिन उपदेश करेंगे, और परसों भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु प्रकट होंगे, प्रकट होकर ध्रुव महाराज के द्वारा स्तुति होगी, और स्तुति के बाद ध्रुव महाराज जब घर पर वापस लौटेंगे तब तो सब लोग, बहुत बड़ा उत्सव होगा। राजा उत्तानपाद बहुत बड़ी पालकी लेकर, हाथी घोड़े, बहुत बड़ी बारात लेकर खड़े होंगे, और ध्रुव महाराज का स्वागत होगा, ध्रुव महाराज की विजय होगी, और अंत में ध्रुव महाराज मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रखकर भगवान के धाम को अर्थात ध्रुव लोक को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा हरे।
राम राम हरे।
ध्रुव महाराज की तरह हमें भी यदि यह जानना है कि भगवान कहां मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, तो कल टाइम से आकर हम सबको नारद मुनि का उपदेश, अब तक नारद मुनि सही उपदेश नहीं दे रहे थे, अब नारद मुनि सही उपदेश देंगे, किस प्रकार से भगवान मिलते हैं, तो कल के दिन यह कथा आएगी। हरे कृष्ण।